মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার বলে মধুর বিন্দা বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরিষা মধুর বিন্দা বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরিষা মধুর বিন্দা বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরিষা বর যুবতী ভাবে না বাকতি 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 শকতি হই তো কার শকতি হই তো কার যদি গৌর না হইতো তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম রে যদি গৌর না হইত তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম রে গাও গাও পুন গোরাঙ্গে রগুন সরল করিয়া মন গাও গাও পুন গোরাঙ্গে রগুন সরল করিয়া মন সাগরে এমন দয়াল এ বাবা সাগরে এমন দয়াল এ বাবা সাগরে এ বাবা সাগরে এমন দয়াল এ বাবা সাগরে এমন দয়াল না দেখিয়ে একে জ যদি গৌর না হইত তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম রে যদি গৌর না হইত তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম রে গৌরাঙ্গ বলিয়া নগেনু গলিয়া কেমনে ধরিনু দে আর গৌরাঙ্গ বলিয়া নাগেনু গলিয়া কেমনে ধরিনু দে আর গৌরাঙ্গ বলিয়া নাগেনু গলিয়া কেমনে ধরিনু দে গৌরাঙ্গ বলিয়া নাগেনু গলিয়া কেমনে ধরিনু দে বাসু রহিয়া বাসন দিয়া বাসু রহিয়া পাশন দিয়া বাসুরহিয়া পাশন দিয়া বাসুরহিয়া পাশন দিয়া কেমনে গড়িয়াছে বিধি কেমনে গড়িয়াছে বিধি কেমনে গড়িয়াছে বিধি কেমনে গড়িয়াছে যদি গৌর না হইত তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম রে যদি গৌর না হইত তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম রে যদি গৌর না হইত তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম রে যদি না হইত তবে কি হইত কেমনে ধরিতাম রে ও দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন দয়াল নিতাই ও দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে ও দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন নাচরে আমার মন রে নাচরে আমার মন নাচরে নাচরে আমার মন রে নাচরে আমার মন নাচরে আমার মন দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন দয়াল নিতাই চৈতন্য দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচে আমার মন দয়াল নিতাই এমন দয়াল তো নাই হে এমন দয়াল তো নাই হে মার কে প্রেম দয় এমন দয়াল তো নাই হে অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেম ধনা ওরে অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেম ধনা দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচে আমার মন দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচে আমার দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচে আমার মন দয়াল ও নামে অপরাধ বিচার তো নাই হে আর ও নামে অপরাধ বিচার তো নাই হে কৃষ্ণ নামে রুচি হবে ঘুচিবে বন্ধন কৃষ্ণ তখন কৃষ্ণ নামে রুচি হবে ঘুচিবে বন্ধন কৃষ্ণ দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচে আমার মন দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচে আমার মন দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচে আমার দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচে আমার মন কৃষ্ণ নামে অনুরাগ তো হবে হে কৃষ্ণ নামে তখন অনায়াসে সফল হবে জীবের জীবন অনায়াস তখন অনায়াসে সফল হবে জীবের জীবন অনায়াসে সফল হবে দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচে আমার মন দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচে আমার মন দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচে আমার মন দয়াল চৈতন্য বলে নাচে আমার মন
জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় গোপী জন বল্লভ গিরিবর ধারী জয় গোপী জন বল্লভ গিরিবর ধারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় গোপী জন বল্লভ গিরিবর ধারী যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যমুন তীরাবন চারী যমুন তীরাবন চারী মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 জয় রাধা গিরিধারে রাধা গিরিধারে রাধে জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় বলদেব জয় সুভদ্রা জয় গৌরনিতায় 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 জয় গৌরনিতায় নিতায় গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতায় গৌর জয় জয় প্রভুপাদ 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 শিল প্রপাদ কি জয়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্, দেবীং সরস্বতীং ব্যাসম্, ততো জয়ামুদীরয়েত্। নষ্টপ্রায়েষু ভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া, ভগবতি উত্তমা শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকীম্। শ্রীমদ ভাগবতম স্কন্ধ সাত অধ্যায় আট শ্লোক সংখ্যা বয়ালিশ।
প্রত্যানীতা পরমা ভবতা ত্রায়তা নহ স্বভাগা দৈত্যাক্রান্ত হৃদয়কমলম তদ্গৃহম প্রত্যবোধি কালগ্রস্তম কিয়ৎ ইদম অহো নাথ শুশ্রূষতাম তে মুক্তি তেষাম না হি বহুমত নারসিংহ অপরে কিম। শ্রীন্দ্রোবাচ প্রত্যনিতা পরমম ভবতত্রয়তান্ন স্বভাগা প্রত্যনিতা পরমম ভবতত্রয়তান্ন স্বভাগা দৈত্যাকৃতম হৃদয়কমলম তদ্গৃহম প্রত্যবোধি দৈত্যাকৃতম হৃদয়কমলম তদ্গৃহম প্রত্যবোধি কালগ্রস্তম কিয়দ্দিমহতো ইদমহো নাথ শুশ্রুতাম তে কালগ্রস্তম কিয়দমহো নাথ শুশ্রুতাম তে মুক্তিস্তেষাম নহি বহুমত নারসিংহাপরে কিম্। মুক্তিস্তেষাম নহি বহুমত নারসিংহাপরে কিম্। শ্রীন্দ্রোবাচ প্রত্যনিতা পরমম ভবতত্রয়তান্ন স্বভাগা প্রত্যনিতা পরমম ভবতত্রয়তান্ন স্বভাগা
दैत्याकृतं हृदयकमलं तद्गृहं प्रत्य भोधि कालग्रस्तं कियादिहो नाथ सुश्रुतां ते मुक्तेस्तेषां नहि बहुमता नारसिंहा परे किम् श्रीन्द्रो वाच प्रत्यनिता परमं भवतत्रयता न स्वभागा दैत्याकृतं हृदयकमलं तद्गृहं प्रत्यभोधि कालग्रस्तं कियादिमहो नाथ सुश्रुतां ते मुक्तेस्तेषां नहि बहुमतत् नरसिंह परा किम् इन्द्रो वाच कृतं हृदय कमलं तद्गृहं प्रत्यभोधि कालग्रस्तं कियादिदं अहो
माताजी
श्रीन्द्र उवाच अत्यानिता परम भवता त्रयतन स्वभागा दैत्याक्रान्तहृदयकमलं तद्गृहं प्रत्यभोधि कालग्रस्तं कियदिति मुहो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्तेस्तेषां नहि बहुमता नारसिंहपरे.
अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. राजा इंद्र ने कहा, हे परमेश्वर, आप हमारे उद्धारक तथा रक्षक है. आपने दैत्य से हमारी वास्तविक यज्ञ भाग लौटाए हैं, क्योंकि असुर राज हिरण्यकशिपु अत्यंत भयानक था. अतः आपके साथी निवास हमारे हृदय आपके साथी निवास करने वाला हृदय आपके द्वारा विजित हो चुके थे. अब आपकी उपस्थिति से सारे हृदयों से निराशता अंधकार दूर हो गया है. हे प्रभु, जो लोग आपकी सेवा में सदैव लगे रहते हैं, आपके लिए सारा भौतिक ऐश्वर्य तुच्छ है, क्योंकि आपकी सेवा मोक्ष से भी बढ़कर है. वे जब मोक्ष की भी पराह नहीं करते तो काम अर्थ तथा धर्म की विषय में क्या कहा जाए. तात्पर्य, इस भौतिक जगत में दो प्रकार के लोग हैं, देवतागण तथा असुर. यद्यपि देवता भौतिक भोग के प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन वे होते हैं भगवान के भक्त जो वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करते हैं. हिरण्यकश्यपु के राज्य काल में प्रत्येक व्यक्ति वैदिक सभ्यता के नित्य कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ था. अतएव हिरण्यकश्यपु मार डाला गया है तो देवताओं को विशेष सुख हुई, क्योंकि वे हिरण्यकश्यपु द्वारा विचलित रहते थे. क्योंकि कलयुग में सरकार असुरों से पूर्ण रहती है, अतएव भक्तों का जीवन संकट में रहता है. वे यज्ञ नहीं कर सकते, अतएव भगवान विष्णु की पूजा के लिए किए जाने वाले यज्ञ का प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते. देवताओं के हृदय में सदैव असुरों का भय समाया रहता है, अतएव वे भगवान के विषय में सोच भी नहीं पाते. देवताओं का कार्य है अपने हृदयों में भगवान की सदैव चिंतन करना. भगवद गीता में कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते एव माम समे युक्ततमो मुताः. समस्त योगियों में जो दिव्य प्रेम भक्ति से मेरी पूजा करते हुए सदैव श्रद्धा पूर्वक मुझ में निवास करते हैं, वह योग में मुझमें घनिष्ठता पूर्वक बांध जाता है और सर्वोच्च होता है. देवतागण पूर्ण योगी बनने के लिए सदैव भगवान की ध्यान में लीन रहते हैं. लेकिन असुरों की उपस्थिति के कारण उसके हृदय में उनके उनके हृदय में सदैव असुरों की कार्यकलापों से भरे डर रहता डरे रहते हैं। इस तरह उनके हृदय यदि परमेश्वर के वास के निमित्त है किंतु व्यवहारिक रूप से वे शत्रुओं द्वारा आच्छादित रहता है। अतएव जब हिरण्यकश्यपु मर गया तो देवताओं को उसासी हुई क्योंकि अब वे भगवान के विषय में आसानी से सोच सकेंगे। जब उन्हें यज्ञ फल प्राप्त हो सकेगा और इस भौतिक जगत में सुखी बन सकेंगे। ओम अज्ञात विरांदस्य ज्ञानांजन शलाक चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्री गुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्मैष्ठमांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबको मालूम है आजकल हर रोज भागवतम के क्लास में नरसिंहदेव का लीला का चर्चा हो रहा है। पिछले एक हफ्ते में ये चर्चा हो रहा है कि किस प्रकार अनेकों देवता लोग भगवान नरसिंहदेव के सामने आके वो स्तुतियां कर रहे हैं। ये जो स्तुतियां हैं इसका शुरुआत होता है ब्रह्मा जी की स्तुति के द्वारा। जैसे आप सबको मालूम है हिरण्यकश्यपु का वध हो गया, अभी नरसिंहदेव के अंदर इतना क्रोध है, अभी क्रोध शांत नहीं हुआ। नरसिंहदेव हिरण्यकश्यपु को वध करके जो सिंहासन हिरण्यकश्यपु बैठता था उसी सिंहासन के जाके ऊपर बैठ गए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। वैसे एक असुर का सिंहासन है उसके ऊपर भगवान जाके क्यों बैठे? अस्तित्व में हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष कोई और नहीं है, जय विजय है। तो जय विजय जिस आसन के ओर बैठे हैं चाहे कोई भी रूप में क्यों ना हो तो भक्तों का ही आसन है। जो आसन भक्त बनाते हैं उस आसन के ओर भगवान आके विराजते हैं। तो वैसे हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष असुर है, दिखाई पड़ रहे, लेकिन है कौन? जय विजय। तो भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, जितना भक्त अपने हृदय में भगवान के लिए आसन बनाता है उस आसन के ऊपर भगवान आके बैठते हैं। तो अभी इस आसन बैठे हैं और अभी क्रोध शांत नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी शुरुआत में गए, वो जाके प्रार्थना करते हैं। वो सबसे पहला स्तुति ब्रह्मा जी का है। जैसे कि हर हफ्ता जब सन रविवार को क्लास होता है पिछले के कुछ श्लोकों के ऊपर हम चर्चा करते हैं, हम सारे श्लोकों को तो नहीं लेंगे, ये बात ध्यान, ये तीन श्लोक को लेंगे, 40वां 41वां और 42वां जो आज का श्लोक है, और उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे। तो सबसे पहला ब्रह्मा जी पहुंचे, वैसे तो सारे 33 करोड़ देवता एक सारे इतने भी अनेकों योनियों के जितने भी लोग थे सब उपस्थित हो गए, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किम पुरुष और सुनंदा, कुमुंदा, अनेकों अनेकों जितने बड़े बड़े ऋषि है सब लोग उपस्थित हुए। तो ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है, आदि कवि है, वो पहुंच के भगवान से प्रार्थना करते हैं, माय लॉर्ड यू आर अनलिमिटेड एंड यू पोजेस अनलिमिटेड पोटेंसीज। ब्रह्मा जी सबसे पहला प्रार्थना करते हैं, हे भगवान नतः, ब्रह्मा जी नथोस्मि अनंतस्य दुरंत शक्तये। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान को संबोधित करके हुए उन्होंने कहा कि नथोस्मि, नतः अस्मि, अस्मि मतलब मैं, नतः मैं प्रणाम करता हूं, मैं आपका शरणागत होता हूं। तो ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी कोई भी स्तुति किया जाता है सबसे पहला शरणागत होना चाहिए। शरणागति के बिना कोई भी प्रार्थना, कोई भी भक्ति का कार्य जो है उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। ये श्रील भक्तिनोद ठाकुर अपने शरणागति के गीतों के ऊपर ये व्याख्या लिखते हैं कि ये शरणागति का जो एक ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ लिखते हैं प्रो भक्तिनोद ठाकुर, उनके अंदर 50 गीत है शरणागति के, 6 लक्षणों के ऊपर, एक एक के ऊपर 5, 6, 10 ऐसा कुछ गीत है उसको, जैसे मानस देह हो गया हो, जो किच्छ मोर, वो सब चीजें जो है शरणागति के अंतर्गत आता है। उसके ऊपर एक जगह लेख लिखते हैं, ये किताब या शरणागति किताब का ये महत्व क्या है, क्या जरूरत है, क्योंकि ये भक्ति का दरवाजा है शरणागति, शुद्ध भक्ति का दरवाजा है शरणागति। शरणागत हुए बिना कोई व्यक्ति भक्ति आगे नहीं कर सकता है, तो ये शरणागति अति महत्वपूर्ण है। कभी कुछ भक्त लोग संतुष्ट हो जाते हैं कुछ भक्तियों का अंग पालन करने मात्र से, भक्ति का अंग पालन करने से बहुत फायदा प्राप्त होता है, केवल नाम ग्रहण करने से सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो नाम किस भाव से ग्रहण करना चाहिए, शरणागति के भाव से ग्रहण करना चाहिए, इन वेरी सरेंडर्ड मूड। ये बहिरंगी कार्यकलाप से ज्यादा अंदरूनी कार्यकलाप है। एक होता है बहिरंगी कार्य, जैसे भगवान का सेवा करना या नाम जप करना, ये सब चीजें एक एक्सटर्नल एक्टिविटीज है, भजन क्रिया है, लेकिन वो क्रिया के पीछे जो भाव है उसको उत्पन्न करने के लिए प्रयास करना है, वो भाव का सबसे पहला सीढ़ी है शरणागति का भाव को स्वीकार करना। तो इसलिए गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में खास करके भक्तिनोद ठाकुर के जो शरणागति के जो भजन है उसको भक्तों को गाना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में क्रिया महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हृदय में क्या क्या बातें बीत रही हैं, कितना भगवान से प्रेम उत्पन्न हुआ है, कितना हम भौतिक आसक्ति से छूट रहे हैं, इन सब बातों के ऊपर ध्यान देना आवश्यक होता है। शुरुआत में हम कोई भक्त से पूछते हैं कि आपका 16 माला हो रहा है, हाँ हो रहा है, शुरुआत में पूछते हैं कि आप मंदिर क्यों नहीं आया, ये सब चीजें प्राप्त करने के बाद हमारे हृदय में भक्ति की भावना को जागृत करने के लिए शरणागति आवश्यक है। तो इसलिए शरणागति के बिना भगवान का स्तुति के अंदर ही प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मा जी नथो अस्मि, मैं आपका प्रणाम करता हूँ, मैं आपका शरणागत होता हूँ। आप कोई प्रार्थना लीजिए, गजेंद्र की प्रार्थना लीजिए, कुंती महारानी की प्रार्थना लीजिए, अभी दामोदर अष्टम की प्रार्थना लीजिए। सबसे पहला क्या है दामोदर अष्टम की प्रार्थना में, नमामीश्वरम। कुंती महारानी की प्रार्थना में नमस्ते पुरुषम। तो हर जगह नथोस्मी, नमस्ते, नमस्ते, नमामी, ये शब्द से शुरू होता है प्रार्थना का सबसे पहला शरणागति। होने के बाद भगवान का गुणगान किया जाता है। क्या है भगवान का गुणगान? ब्रह्मा जी ने क्या कहा? अनंतस्या, आप अनंत हो, यू आर अनलिमिटेड। तो ये अनलिमिटेड भगवान अनंत है, ये ब्रह्मा जी ने क्यों संबोधित किया? क्योंकि अभी अनंत होने के नाते उनके सारे गुण, सारा शक्ति, ये सब कुछ अनंत है। अभी भगवान ये हिरण्यकशिपु इतना बलशाली था कि सारे देवता लोग भी काम जाते थे, इवन ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, वैसे हिरण्यकश्यपु सारे देवताओं को भयभीत कर दिया था, सबको उन्होंने तहस तहस कर दिया था, इंद्र का लोक को स्वीकार कर लिया था, इंद्र राजा बन गया था और अन्य देवताओं को भी ऊपर अपनी आधिपत्य चलाया था, लेकिन ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। ब्रह्मा जी के लोक में जाके हिरण्यकश्यपु कुछ आक्रांत नहीं मचाया, एक ब्रह्मा जी को आदर दिया, क्योंकि क्यों, क्योंकि उनको वरदान किससे मिला था, ब्रह्मा जी से मिला था, कम से कम एक तो सद्बुद्धि था, एक तो था वो कौन भस्मासुर है ना, भस्मासुर, वो शिवजी से उन्होंने ये वरदान प्राप्त किया और जिनसे वरदान प्राप्त किया उनको मारने के लिए पीछे गए। लेकिन हिरण्यकश्यपु एक अच्छाई तो था, समझना चाहिए, वो क्या था, ब्रह्मा जी को स्पेयर किया, उनको छोड़ा, लेकिन ब्रह्मा जी को मालूम था ये दुष्ट है तो क्या करें, वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। ब्रह्मा जी वैसे डरे हुए थे हिरण्यकश्यपु से, बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो चाहते तो जाके कुछ कर सकते, लेकिन उन्होंने खुद अपना वरदान दिया है तो कुछ नहीं किया उन्होंने ब्रह्मा जी ने। तो एक प्रकार देखा जाए हिरण्यकश्यपु का शक्ति अनंत हो गया था, इट बिकेम अनलिमिटेड। क्यों अनलिमिटेड था, क्योंकि उनका ऐसा वरदान प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा ही, स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया, तो उनको मारने के लिए साधारण व्यक्ति कोई मार नहीं सकता, केवल जिनके पास अनंत शक्ति और अनंत बुद्धि है वही व्यक्ति कर सकता है। तो ब्रह्मा जी इधर भगवान की बुद्धि की ओर इंगित कर रहे हैं, आपका बुद्धि जो है अनंत है। तो वैसे हिरण्यकश्यपु ने ऐसा वरदान मांगा तो मैंने दे दिया, और हिरण्यकश्यपु का जो वरदान जो प्राप्त किया हिरण्यकश्यपु ने, अगर कंप्यूटर में फिट किया जाए क्या क्या प्रोबेबिलिटी है मरने का, तो वो तो असंभव है। दिन और रात, ना दिन ना रात, ऐसा कोई समय है जो ना दिन हो ना रात हो? वैसे साधारण बुद्धि से देखा जाए तो ऐसा कोई समय ही नहीं है, दिन और रात में तो मार ही नहीं सकता, तो कब मारे, प्रश्न तुरंत उत्पन्न हो सकता है, और ना आसमान में ना जमीन पे, या जमीन है या आसमान है, बीच में तो होता ही नहीं कुछ। अभी ये कैसे, इसको कैसे फिट करेंगे, ये सारे जितने भी प्रोबेबिलिटीज है, जैसे मैथमेटिक्स में, अंग्रेजी में, गणित में एक सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, पता नहीं आपको किसके कितने लोगों को मालूम है, प्रोबेबिलिटी करके एक एक चैप्टर है, यानी ये संभाव्यता, क्या बोले हिंदी में, क्या समझ में नहीं आता, यानी आप कोई कॉइन है, संभावना, कि संभावना करके आपको मान लीजिए लॉटरी टिकट खरीदा, आपको जीतने का संभावना क्या है, तो एकदम बिल्कुल ऑलमोस्ट नहीं है, हो सकता है तो बस लाखों में एक, बहुत मुश्किल है वो संभावना। लेकिन वैसे ही इस प्रकार देखा जाए हिरण्यकश्यपु को मारने की या उनकी मृत्यु का संभावना ऑलमोस्ट जीरो था, वो हो ही नहीं सकता था, ऐसे ऐसे कंडीशन था। लेकिन ब्रह्मा जी उनको क्या कर रहे, आपकी अनंत बुद्धि है, आपकी बुद्धि ना अनंत है कि असंभव को भी आपने संभव बनाया, लेकिन आपने तोड़ा नहीं, रूल को तोड़ा नहीं। ब्रह्मा जी का जो वाणी है, वैसे तो हम कुछ पिछले श्लोकों में देखा कि भगवान ने हिरण्यकश्यपु इसलिए माना, सत्यम विधातुम निजवृत्य भाषितम, सत्यम विधातुम निजवृत्य भाषितम, इस श्लोक का अनुवाद में प्रहलाद की जो वाणी को संरक्षण करने के लिए, सत्य है करके सिद्ध करने के लिए भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा पूछा प्रहलाद से कि हे प्रहलाद तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो उन्होंने बोला हर जगह है, तो ये खम में है क्या, तब प्रहलाद ने कहा है, तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि ऐसे स्तंभ में है तो इनको स्तंभ को मैं तोड़ूंगा, तोड़ के दिखाऊंगा कि आते कि नहीं, देखता हूं मैं तुम्हारे भगवान। तो भगवान आतुर होके प्रकट हो गए, मेरे भक्त ने क्या कहा, स्तंभ में मैं हूं, अगर इसको तोड़ा जाए, अगर मैं प्रकट नहीं हो जाऊंगा, जो लोगों का बचा कुचा विश्वास है भक्तों में वो भी खत्म हो जाएगा, वैसे तो मेरे ऊपर तो विश्वास तो है नहीं लोगों का, है कि नहीं, वैसे भगवान को मालूम है लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, लेकिन भक्तों के ऊपर तो विश्वास है लोगों का। अब देखिए सही बात है, ये मैंने नोटिस किया है कि आप गिरोवस्त्र धारण कीजिए, गिरोवस्त्र की जरूरत, आप खाली धोती कुर्ता पहन के जाइए, शिखा धारण करके जाइए, तिलक धारण करके जाइए रास्ते में, तो आपको प्रणाम करने के लिए आ जाएगा, उसको बोलेंगे भगवान के बारे में तो बोलेंगे भगवान होगा, हम जानते हैं विश्वास नहीं करते, तो प्रणाम क्यों किया इधर ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया है कि विश्वास लोगों का कोई भी कुछ भी धार्मिक कार्यकर्ता उसको झुकते हैं, उनको पैर पड़ते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जिसको अब आपने पैर पड़ा, अगर वो बोलता है कि भगवान का पैर पड़ो, तो ले भगवान भगवान पता नहीं है कि नहीं। वो ये बात मुझे अनुभव हुआ, कुछ दिन पहले ट्रेन से आ रहा था, एक व्यक्ति मेरे पैर पड़ा और महाराज मैं बहुत दुखी हूं, मुझे क्या करना है। तो मैंने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र उसको जप करो, हमेशा इसको याद करो, हरे कृष्ण ताल। बोलता है कि किसको क्या मालूम भगवान है कि नहीं। तो मेरा आश्चर्यचकित हो गया अभी तो पैर पड़ा सब कुछ किया, लेकिन अभी बोलता है किसको क्या मालूम भगवान है कि नहीं। तो ये बात भगवान को मालूम है, ये बहुत सूक्ष्म चीज है, इसको नोटिस करना चाहिए। ये कृष्ण को ही मालूम है कि लोग मेरे ऊपर, मेरे अस्तित्व, मेरे ऊपर विश्वास की छोड़ो, मेरे अस्तित्व के ऊपर भी विश्वास नहीं है। They don't even believe that I exist. What to speak of having trust in me? तो अभी उनको मालूम है, लोग जो है कम से कम जो भक्त है उसके ऊपर विश्वास करते हैं लोग। अगर सारा जगत को मालूम पड़ जाए, प्रहलाद ने कहा कि स्तंभ में मैं हूं और मैं प्रकट नहीं हुआ, तो प्रहलाद क्या साबित हो जाएगा सारा जगत के सामने? झूठा साबित हो जाएगा। तो मैं तो झूठा ही हूं, बहुत बार झूठ बोले बाल लीलाओं में, और अनेकों महाभारत ने भी झूठ बोले। तो लोग तो एकदम तुरंत ही बात है, जैसे कृष्ण का नाम लो तुरंत बोलते हैं कृष्ण ने तो बहुत पॉलिटिक्स किया, बहुत झूठ बोला, यही बात उठाते, और कुछ दिखाई नहीं पड़ता उनको। उन्होंने भगवत गीता का प्रवचन दिया, वो सब कभी नहीं बोलते, विश्व रूप दिखाए वो सब नहीं बताएंगे। उन्होंने रास लीला किया, उन्होंने झूठ बोला, वही बात कहेंगे। तो एनी हम जो भी है, ये कृष्ण को ऐसा अनुभव हुआ कि प्रहलाद अगर झूठा साबित हो जाए तो लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो सत्यम विधातम निजवृत्य भाषितम, मेरा भक्त ने जो वचन उन्होंने उच्चारण किया है उन वचनों को मैं सत्य करके साबित करूंगा। I want to prove that devotee's words are truth। केवल प्रहलाद का ही नहीं, इधर जब प्रकट होने के बाद अभी उनको और एक भक्त का वचन याद आया, कौन है वो? ब्रह्मा जी का वचन। वैसे भगवान प्रकट हुए हिरण्यकश्यप कैसे भी मार सकते थे, भले ही क्या उनको ब्रह्मा जी का वरदान का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्या वरदान दिया तो ब्रह्मा जी का वरदान सबसे श्रेष्ठ है क्या? भगवान तो श्रेष्ठ है, उनके सामने कोई भी भौतिक वरदान का कोई काम नहीं है। लेकिन सारे नियम बनाने वाले भगवान हैं और उनके पास तोड़ने का भी अधिकार है। He can break the rules also. One who has the power to make the rule, he can break the rule. जो नियम बनाने का जिसका अधिकार है उनको तोड़ने का भी अधिकार है। को ब्रह्मा जी का वरदान को इज्जत देने की कोई आवश्यकता नहीं था भगवान को, लेकिन फिर भी निजवृत्य भाषितम, ब्रह्मा जी ने कहा ना, ब्रह्मा जी ने वचन दिया ना हिरण्यकशिपु को, ठीक है तो मैं उन वचनों को सिद्ध करते हुए हिरण्यकशिपु को मारूंगा। केवल हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए जब नरसिंहदेव प्रकट हुए तो प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए नहीं, ब्रह्मा जी का वाणी को भी सत्य करने के लिए प्रकट हुए। इवन टू प्रूव दैट ब्रह्मास वर्ड्स आर ट्रू। वो प्रकट होना जो है प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए, प्रकट होने के बाद जिस प्रकार प्रकट हुए, जिस प्रकार हिरण्यकश्यप को मारे, वो किसके लिए, किसकी वाणी को सत्य करने के लिए? ब्रह्मा जी का वाणी को सत्य करने के लिए। ब्रह्मा जी ने क्या कहा था हिरण्यकश्यप को कि तुम्हारा मृत्यु ना दिन को होगा ना रात को होगा, ना आकाश में होगा ना जमीन में होगा, इस मेरे द्वारा सृष्टि किए गए किसी के द्वारा नहीं होगा, आपका कोई भी हथियार के द्वारा आपका ये नहीं होगा, आपका मृत्यु नहीं होगा। तो ये ब्रह्मा जी की वाणी थी। तो सत्यम विधातम ऋजवृत्ति भाषितम में ब्रह्मा जी का भी नाम है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा जी भगवान को कहते अनंत, हे अनंत है आप, आपका अनंत बुद्धि है। हिरण्यकश्यपु ने अपना पूरा बुद्धि को लगा के सोचा कि मैं अपने आप को सुरक्षित करूं, लेकिन आपका बुद्धि अनंत होने के नाते हिरण्यकश्यपु का बुद्धि भी काम नहीं किया और मेरा बुद्धि भी काम नहीं किया। और आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि नथोऽस्मि अनंतस्य दुरंत शक्तये, दुरंत शक्तये है। इस जगत में केवल बुद्धि होना ही काफी नहीं है, शक्ति भी होना चाहिए। वन शुड हैव द स्ट्रेंथ ऑल्सो, अनंत शक्तये। और जैसे हिरण्यकश्यपु को आपने बहुत बुद्धि द्वारा उन्हें मारा आपने, लेकिन साथ साथ में वो साधारण व्यक्ति थोड़ी ना था। अगर मान लीजिए ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु को वरदान नहीं देते, लेकिन फिर भी उसको मारना संभव नहीं था। इट इज नॉट वेरी इजी टू किल हिम। वो अति अति बलशाली, इतना शक्तिशाली है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। तो आपने इस हिरण्यकशिपु को मार के आपने दिखाया कि आप अनंत शक्ति है, दुरंत शक्ति है। आपका शक्ति जो है दुरंत, दुरंत मतलब ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपका शक्ति को अंत कर सकता है। हिरण्यकशिपु और अनेकों असुरों का, भौतिकवादियों का जो शक्ति है वो तो तुरंत अंत हो सकता है, या कोई व्यक्ति उसको नाश हो सकता है। हर शक्ति का नाश है, लेकिन आपका शक्ति जो है वो नाशवान नहीं है, दुरंत शक्ति है। आगे नोबडी कैन, नो वन कैन एस्टिमेट और कैलकुलेट योर पावर्स एंड वंडरफुल इन्फ्लुएंस। आपका जो प्रभाव है, आपका जो प्रतिभा है, कोई भी व्यक्ति वो अपने मन में चिंतन नहीं कर सकता। प्रवृत्ति कर्मणे विचित्र वीर्यस्य, विचित्र वीर्यस्य, आपका जो शक्ति है विचित्र है। यानी कोई व्यक्ति अपना चित्त में, अपना चिंतन में आपकी शक्ति को कैलकुलेट नहीं कर सकता, माप नहीं सकता। अच्छा, ये भगवान की इतना शक्ति है, कोई नंबर नहीं दे सकता, कोई इतना ताकतवान है करके कोई चिंता भी नहीं कर सकता। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, विश्वस्य सर्ग सृष्टि सम्यम गुणैः, थ्रू द मेटीरियल क्वालिटीज यू आर वेरी इजिली क्रिएट मेंटेन इट अगेन रिलेटेड। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं इस जगत को सृष्टि करने के लिए बहुत प्रयास किया। ब्रह्मा जी खुद अपना अनुभव कर रहे हैं कि मैं, मेरा जब जन्म हुआ आपकी कमल के नाभि से, एकदम विचलित हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं क्या दिखाई, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो ब्रह्मा जी ये बात को स्मरण करते हुए कहते हैं कि आपको मुझे उत्पन्न करने के लिए, मुझे सृष्टि करने के लिए आपको कोई कष्ट रहा ही नहीं। बहुत आसानी से बस खाली स्मरण करते हुए आपके नाभि कमल से कमल उत्पन्न हुई, उस कमल से मैं प्रकट हो गया, और मुझे आपने ड्यूटी दिया कि आप सृष्टि करो। लेकिन वो सृष्टि करने के लिए मुझे कुछ मालूम नहीं था, मैं पूरा अज्ञान में डूबा हुआ था, और ये कमल का नाभि कहां से उत्पन्न हो रहा है उसका अंत को ढूंढने के लिए मैं नीचे गया। कमल का नाभि, कमल का जो नाल के अंदर, हजारों साल तक नीचे नीचे गया, केवल अंधकार ही दिखाई पड़ा, उसका मूल दिखाई नहीं पड़ा। और वापस आके मैं विचलित हो गया था। उस समय ब्रह्मा जी को आप मालूम है कि वो तपा तपा, ये शब्द इस्तेमाल सुना उन्होंने ब्रह्मा जी ने, ये तपा तपा शब्द जैसे उन्होंने सुना, ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे और भगवान प्रकट होकर ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रदान किया। उस लीला को स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे सृष्टि करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, इतना सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन आप तो सृष्टि स्थिति प्रलय तो वैसे ही कर देते हो, खाली स्मरण मात्र से कर देते हो। यह आपका शक्ति अनंत है, हम बहुत तुच्छ हैं, वी आर सो इनसिग्निफिकेंट। तो ये प्रार्थना की शैली में ये तीसरा भाग है। वो क्या है तीसरा भाग? अपनी दीनता को व्यक्त करना। सबसे पहला है प्रार्थना में कि मैं शरणागत होता हूं, आई वॉन्ट टू सरेंडर, जैसे नतोस्मि, मैं प्रणाम करता हूं, मैं शरणागत होता हूं करके, ये पहला भाग है प्रार्थना का। दूसरा है भगवान का गुणगान करना, जैसे अनंत दुरंत शक्तये विचित्र वीर्यस्य वीर्यया प्रवृत्त कर्मणे पवित्र कर्मणे, आपका कार्य जो है अद्भुत है, आपका आपका शक्ति अनंत है। तो ये सब चीजें भगवान का गुणगान है। शरणागति प्राप्त करने के बाद, शरणागत होने के बाद भगवान की स्तुति किया जाता है, गुणगान किया जाता है। उसके बाद ब्रह्मा जी अपनी दीनता को व्यक्त कर रहे हैं, जो मैं सृष्टि करता हूं तो मुझे इतना मेहनत करना पड़ता है लेकिन फिर भी बराबर नहीं हो पाता है, लेकिन आप तो सृष्टि स्थिति प्रलय तो वैसे ही संकल्प मात्र से कर देते हो। तो अपनी दीनता को व्यक्त कर रहे हैं, आई एम सो यूजलेस आपके सामने, मैं इतना हीन हूं। बाद में स्वाली लया संभवंत संधदत्ते अव्ययात्मने, तो विदाउट डिस्ट्रेक्शन आई देयर फॉर ऑफर माई ओबेशंसेस टू। इस प्रकार अपनी दीनता को ब्रह्मा जी व्यक्त कर रहे हैं। ये होने के बाद अभी ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी को, शिव जी को क्यों कहा कि आप जाके प्रार्थना करो, क्योंकि ब्रह्मा जी सोचने लगे अभी नरसिंह देव का रूप देख के ब्रह्मा जी ऐसा लगा कि वैसे तो हिरण्यकशिपु से लोग डरे हुए थे, लेकिन हिरण्यकशिपु को मारने वाले कौन है, नरसिंह देव, यानी हिरण्यकशिपु से ज्यादा शक्तिशाली है नरसिंह देव। अभी ब्रह्मा जी सारे देवताओं को देखे तो देवता लोग जो जितना हिरण्यकशिपु से लोग डरते थे, अभी ये नरसिंह देव को देख के और उनके हृदय में डर उत्पन्न हुआ। क्या डर उत्पन्न हुआ, क्योंकि उनको मालूम है भगवान है, तो भगवान जब उनके हृदय में क्रोध आता है, वो क्रोध में वो सारा जगत को प्रलय कर देते हैं। अभी सभी लोगों को, सारे देवताओं को ये डर हुआ कि कम से कम हिरण्यकश्यपु था, तब तो कम से कम जीवित तो थे, अभी ये नरसिंह देव का रूप देख के ऐसा लग रहा है कि हम अभी मर जाएंगे, क्योंकि प्रलय होने वाला है। अभी ये जो शंका है देवताओं के हृदय में कि अभी नरसिंह देव का क्रोध से अभी प्रलय हो जाएगा, वो शंका को दूर करने के लिए क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने शिव जी को भेजा, आप जाके प्रार्थना करो। अस्तित्व शिव जी के गले से वो कुछ प्रार्थना निकल नहीं रहा था, क्योंकि सब एकदम गदगद हो गए थे, भयभीत हो गए थे, डरे हुए थे, नजदीक जाने के लिए भी उनको हिम्मत नहीं था, ऐसा इतना भयानक गुस्सा था नरसिंह देव में। तो नरसिंह देव का ये इतना भयानक सा गुस्सा देख के सारे देवता लोग भयभीत हुए, लेकिन ब्रह्मा जी कुछ ना कुछ हिम्मत किए, क्योंकि ब्रह्मा जी का प्रार्थना सुनने के बाद भी नरसिंह देव की गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं शिव जी को भेजता हूं, कम से कम बाकी लोगों को आश्वासन तो मिले। क्या आश्वासन मिले, प्रलय करने के लिए नहीं आए, अभी आपका पोस्ट बराबर रहेगा, आप चिंता मत करो। क्योंकि अभी आज का जो प्रेयर है वो इंद्र का है, वो इंद्र तो आपको मालूम है उनका सबसे बड़ा डर क्या है। तो ऐसा भी विचार किया जा सकता है, इंद्र का घबरावट जो है उनका पोस्ट से है। तो ने सोचा कि हिरण्यकश्यपु तो मेरा खाली सीट छीन लिया है कि नहीं, वो तो राज करने लगा, कम से कम मैं जीवित तो था, मान लो प्रलय हो जाएगा तो मैं तो मर जाऊंगा, दूसरी बात मैं अपना इंद्रत्व का जो पोजीशन है, टेन्यूर है, जो वो भी छूट जाएगा प्रलय हो जाएगा, तो कम से कम आशा तो कर सकता हूं कि अगर हिरण्यकश्यपु अगर राज्य करता है तो वो मरने के बाद मुझे वापस मिल जाएगा सीट, लेकिन अगर प्रलय हो गया तो ये डर था सबके हृदय में, ये सोचने लगे कि अभी प्रलय होने वाला है, क्योंकि भगवान इतना कुपित है, वो इतना कोप से पूरा ब्रह्मांड जलने वाला है, ऐसा विचार था। उस विचार को शांत करने के लिए हृदय में लोगों की, जो खास करके देवताओं के मन में जो संशय है प्रलय हो जाएगा, वो संदेह है, उसको दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने शिव जी को भेजा। तो शिव जी तो स्वयं संहार करने वाले हैं, प्रलय करता है, तो वो बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। रुद्र उवाच, श्री रुद्र उवाच। तो शिव जी क्या करते हैं, कहते हैं द एंड ऑफ द मिलियनियम इज द टाइम फॉर योर एंगर। तो सबसे पहला शिव जी ने कहा कोप कालो युगांतस्ते, हे भगवान युगांतस्ते, युगा अंत, युगा अंत जब होता है, युगांत मतलब पूरा प्रलय का जब समय आता है, वो समय में आपको कोप करना चाहिए, कोप कालो, हाँ का, आपका जो कोप करने का, यानी कोप मतलब समझते हैं गुस्सा, तो गुस्सा करने का जो समय है वो समय कब है, कब है, प्रलय के समय में है, आपको प्रलय के समय में कोप करना चाहिए। अभी आपने, आप क्यों कोप कर रहे हो, दूसरी बात यह है कि शिव जी कहते हैं अपनी प्रार्थनाओं में कि कोप कालो युगांतस्ते हतो यम असुरो अल्पकः, हतो यम, आपने उस असुर को मार दिया है तो आपका कोप उचित है, आपका जो गुस्सा है उचित है, लेकिन तभी तक उचित है जब तक वो असुर मरा ना हो।
असुर मरने के बाद भी आप अपना कोप को दिखा रहे हो, इसके वजह से हमारे हृदय में डर उत्पन्न हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो शिव जी कहते हैं। क्या कह रहे हैं? कोप काल युगांतस्ते, आपका युग जो अंत होता है, प्रलय होता है, उस समय यानी ब्रह्मा जी का जब मृत्यु होता है तब आपको कोप करना चाहिए। दूसरे शब्दों में ये जो कोप भगवान का ये क्यों होता है, ये युग अंत में क्यों होता है, प्रलय क्यों होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सृष्टि स्थिति प्रलय, भगवान प्रलय करते क्यों हैं? अगर उन्होंने सृष्टि किया है, प्रलय करने के लिए सृष्टि किया है क्या? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जवाब इस प्रकार है, भगवान ने सृष्टि किया किसके लिए सृष्टि किया? ये सृष्टि के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने दशमूल तत्व में कहते हैं तारुण्यम तत्क्रिया। ये सृष्टि के पीछे भगवान का एकमात्र कारण है, वो है उनका करुणा। उनकी करुणा के वशभूत होकर भगवान को सृष्टि किया, क्योंकि भगवान नित्य अपने प्रिय भक्तों के साथ अनेकों अनंत लीलाओं में मग्न है और उनको ये सृष्टि करने का टाइम कहां है, टाइम क्या, क्यों करे? जो अनंत लीलाओं में अपने स्वांत भक्तों के साथ इतना सुंदर मधुरता का आस्वादन कर रहे, उसमें सृष्टि का कार्य भयानक और टाइम वेस्ट वाला कार्य ये क्यों करे? वही शुड्डू उनका एकमात्र कारण है, क्योंकि जो जीव उनसे विमुक्त हो गए, विमुख हुए हैं, जो जीव उनको भूल गए हैं, उन लोगों का उद्धार के लिए। वैसे उन सारे जीवों को तो ऐसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि अनंत जीव है, अनंत लीलाओं में अंत जीवों के साथ वो लीला कर रहे हैं। कुछ अगर जीव अगर उनको भूल जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कृष्ण को उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर जिसके पास अनेकों हजारों सहस्त्र लक्ष्मी, सहस्त्र लक्ष्मियों के द्वारा सेवा स्वीकार कर रहे हैं, उनमें से दो तीन लक्ष्मी चली भी गई, क्या कुछ फर्क पड़ने वाला भगवान को? नहीं। लेकिन अगर कुछ जीव भगवान को भूल जाते हैं तो भगवान उनकी अनुकंपा से, अनुकंपा शक्ति जो उनकी दया शक्ति है, उसके वजह से वो ये क्रिया करते हैं। वैसे उनको कोई करने की जरूरत नहीं। उपनिषदों में कहा गया है नतस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान का अगर इस जगत में पूरा सृष्टि में भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि में ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको काम करने की आवश्यकता नहीं है, वो है तो भगवान। वो उनको काम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमको कोई चीज प्राप्त करना है तो हमको कुछ कार्य करना पड़ता है तभी प्राप्त होगा। लेकिन भगवान को कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं, क्रिया करने की जरूरत नहीं। इसलिए नतस्य कार्यम करणम च विद्यते कहा गया है उपनिषदों में। उनको कोई कार्य नहीं है। नमाम कर्माणि लिंपन्ति नमे कर्म फले स्वाहा भगवद्गीता में, उपनिषदों में अनेकों जगह इस बात को कहा गया है कि कृष्ण के लिए कोई काम नहीं है। अगर है तो एक ही काम है, वो क्या है? वो भोगना, टू एंजॉय इज ओनली वर्क। लेकिन हमारे लिए क्या है? अगर एंजॉय करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण देखिए कितना कंफर्टेबल पोजिशन, अगर वो मिल जाए तो किसी को लेकिन हो नहीं सकता अगर काम किए बिना अगर किसी को भोग मिले तो व्यक्ति कभी आध्यात्मिक जीवन में नहीं आएगा, नेवर विल डू दैट। लेकिन ये जो स्पेशल क्वालिफिकेशन है कृष्ण का, ये पता नहीं कौन से स्तुति में है, मुझे याद नहीं है। उधर उस स्तुति में एक भक्त इस प्रकार कहते हैं, हे भगवान, आप एकमात्र व्यक्ति हो जो बिना मेहनत किए भोगते हो बिना काम किए आप एंजॉय करते हो, यू एंजॉय विदाउट वर्किंग हार्ड, यानी बहुत आसानी से आप भोगते हो, यू एंजॉय इट वेरी ग्रेट ईज। लेकिन हमको मान लीजिए कोई कमा के भी दिया, कमा के भी खाने के लिए दिया, कम से कम मुंह में तो डालना पड़ेगा, कम से कम मुंह में तो ठीक है, कोई व्यक्ति मुंह में भी डाल दिया ठीक है, उसको चबाना तो पड़ेगा कुछ तो करना पड़ेगा यू टू एंजॉय। लेकिन भगवान के लिए कोई जरूरत है, खाली संकल्प मात्र है ना, खाली एक बार विचार करने मात्र से, जस्ट बाय थिंकिंग ही एंजॉयस। That is why he is known as Ishwar. He is a bhokta. He is a supreme enjoyer. Wo supreme controller hai, is enjoyer. Bhokta, Maheshwara. So anyhow, इधर क्यों वाई क्रिएट्स, क्यों वो सृष्टि करते हैं भगवान, इस जगत की सृष्टि क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं, इतना दुख में है तो भगवान ने सृष्टि क्यों किया? केवल एकमात्र कारण के लिए सृष्टि किया, उसके पीछे अनेकों कारण हैं, लेकिन एक प्रमुख और महत्वपूर्ण असली कारण है, वो क्या है? हमारे ऊपर दया दिखाने के लिए किया, ताकि हम सब इस जगत में सुधर सके आके, ताकि ये जो सुविधा दिया गया है हमको, ये सुविधाओं का फायदा उठाते हुए हम मुक्त हो सके, भगवान की भक्ति कर सके। जैसे हर बच्चा सोचता है पिताजी के बारे में कि ये पिताजी मुझे जबरदस्ती स्कूल में डाल दिया, मुझे परेशान कर रहा है कि नहीं? हर बच्चा, मैं तो बचपन में ही सोचता था कि ये मुझे स्कूल क्यों भेजते हैं, व्हाई दे आर सेंडिंग, मैं ये सोचता था कि ये मेरे दुश्मन इसलिए भेजते हैं। कभी एक बार विचार किया तो मुझे याद है, मैं जब थर्ड स्टैंडर्ड में था, वो अभी भी वो विचार बहुत बार बार मन में आता था, कैसा लगता है कि मेरे माता पिता मुझे घर में नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए वो स्कूल भेजते हैं मुझे घर में नहीं रखना चाहते इसलिए स्कूल भेजते है कि नहीं? तो लेकिन अस्तित्व वो कारण नहीं है, वो हमारे ऊपर दया है, ये आगे जाके बड़ा बनेगा, कुछ अच्छा पढ़ लिख के कुछ ना कुछ करेगा, नहीं तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वो उनको दया है हमारे ऊपर, दया के वश हमको स्कूल भेजते हैं। तो वैसे ही हम हमेशा कंप्लेन करते हैं, भगवान ने हमको इधर भेज दिया, इतना दुख दिया, वो दिया, अस्तित्व में भगवान की दया है, इसलिए उन्होंने सृष्टि की। स्थित कारुण्यम तत्क्रिया, क्रिया मतलब सृष्टि। तो जब माता पिता बच्चों को स्कूल भेजते हैं बहुत दया से, वो स्कूल बच्चा जाके पढ़े, लेकिन वो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, वो जितना भी सुविधा दिया वो सारा सुविधा जो है गलत कामों में इस्तेमाल करता है। भगवान पिताजी ने बोला कि ये 100 रुपए लो, जाके तुम अपना किताब खरीदना, ये 100 रुपए लेके वो पिक्चर देखने चला गया, वो स्कूल में खाली अटेंडेंस दिया, दिन भर वो सोया, कुछ पढ़ाई नहीं किया, फेल हुआ, एग्जाम में फेल हुआ। तो पिताजी को गुस्सा आता है, तो उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा डांट फटकार बोला कि अगले साल अच्छी तरह से पढ़ाई करना, तो फिर वापस स्कूल भेजा। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हमको जन्म प्राप्त होता है, मनुष्य जन्म, ये समझना चाहिए भगवान ने हमको और एक मौका दिया, भगवान की धाम में जाने के लिए और एक मौका प्रदान किया। जिस प्रकार एक बार फेल होने के बाद पिताजी बच्चे को फिर वापस उसी स्कूल में डालता है, किस आशा से डालता है वो पिताजी? ताकि ये साल कम से कम पास हो जाए, है कि नहीं? और मान लो वापस फेल हो गया, फेल होने के बाद पिताजी थोड़ा बहुत तो डांटेंगे, लेकिन बोलेंगे ठीक है और एक बार, इस बार तो जरूर पास होना। बच्चा बोलता है हाँ इस बार जरूर अच्छा करूंगा, लेकिन फिर फेल हुआ। ऐसा कितनी बार बताइए, 1, 2, 3, 4। भौतिक पिताजी तो 2, 3, 4 में थक जाएंगे, लेकिन भगवान तो परम पिताजी है कि नहीं? वो 1, 2, 3 में थक नहीं जाते, वो इंतजार करते हैं। 1,000, 2,000, 10 करोड़, प्रत्येक जन्म, मनुष्य जन्म हमारे लिए एक मौका है, ये कृष्ण ने दिया है मौका, पास हो जाओ इस साल में, फेल हो गया ठीक है अगली बार लेना। लेकिन इंतजार करते करते हर व्यक्ति का हद तो होता है कि नहीं, पेशेंस जब भगवान की ये जो पेशेंस, उसको क्या बोलेंगे, धैर्य का हद हो जाता है, इतना सुविधा देने के बाद भी, इतना अपॉर्चुनिटी देने के बाद में, मैं स्वयं आता हूं वर्चुअल विग्रह के रूप में, शास्त्र दिया हूं, इतना साधुओं को भेजा हूं, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम सुधरा नहीं है, तुम फेल हुआ, चलो तुमको अभी स्कूल से निकाल दूंगा, प्रलय मतलब ये है, ये स्कूल को ही खत्म कर दूंगा। तो ये बात है, तो अब देखिए कितना गुस्सा होता होगा। अगर पिताजी 2-3 साल दो तीन बार फेल होता है तो गुस्सा होता है। ये क्षुद्र जीव, हमको मालूम है जब कोई पढ़ाई नहीं करते थे, बराबर कम नंबर आता था, माता पिता कितना गुस्सा होते थे। तो जब फेल होता था तो इतना गुस्सा होता है माता पिता। अब देखिए भगवान, इतनी बार व्यक्ति फेल हुआ तो कितना गुस्सा होंगे, वो गुस्से में होता है। तो इसलिए शिव जी कहते हैं कोपः काल युगान्तस्ते हतोयम असुरो अल्पकः। ये जो हतोयम हे भगवान, आप ये मत सोचिए कि अभी वो मरा नहीं, वो मर गया है। तो आपने ये जो कोप दिखाया, आपने जो गुस्सा दिखाया, वो हिरण्यकशिपु के ऊपर था, हमारे ऊपर तो नहीं था ना। अभी हिरण्यकशिपु मर गया तो फिर शांत हो जाइए। Why are you not becoming? Now that this insignificant demon, Hiranyakashipu, has been killed. Oh my Lord, you are naturally affectionate to your devotees. अभी वो आपका असुर मर गया है, और मर गया तो आपको ये ध्यान में रखिए, आप भक्तों के प्रति आपका स्नेह है। तो तन सुतम प्राह उपाश्रितम, आपके भक्तों के ऊपर स्नेह है। अभी शिवजी अति बुद्धिमान है, वो समझ गए, तो उन्होंने क्या, तम सुतम, आपका जो सुतम, तम अल्पकार तत्सुतम, हि सन प्रहलाद पाही उपस्थितम, हुई सरेंडर इन स्टैंडिंग नियर बाय। अभी शिवजी समझ गए कि ब्रह्मा जी का प्रार्थना सुनने के बाद भी नरसिम्ह देव शांत नहीं हुए, इसका मतलब है हम में से जितने भी देवता है, ये सारे देवताओं का प्रार्थना सुनने के बाद भी वो शांत नहीं होने वाले हैं। अभी नरसिम्ह देव को शांत करने के लिए एक ही रास्ता है, वो प्रहलाद। ये शिवजी को पहले से मानता, अस्तित्व प्रहलाद की प्रार्थना अंत में आता है, बाकी सब देवताओं की प्रार्थना के अंत में, लेकिन शिवजी पहले ही समझ गए थे ब्रह्मा जी का प्रार्थना सुन के मेरी प्रार्थना तो काम का ही नहीं है, काम होने वाला नहीं, ब्रह्मा जी का प्रार्थना सुनने के बाद भी शांत नहीं हुए तो हमारा काम का, हमारा बस का बात नहीं है, कितना भी स्तुति किया जाए कुछ होने वाला नहीं है। वैसे शिव जी कहना चाहते थे कि नरसिम्ह देव, हिरण्यकशिपु तो मर गया और आपका गुस्सा जो है उसके वजह से आपके जितने भी भक्त है, देवता लोग सब भयभीत है, आप शांत हो जाइए, वो कह सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा, आपका पुत्र, आप भक्त वत्सल हो, और आपका भक्त कौन है इन सारे लोगों में, हम नहीं है, ये प्रहलाद है, ये प्रहलाद को देखो। वैसे प्रहलाद डरे हुए नहीं थे, ये ध्यान में रखिए, लेकिन डर किसका था, देवताओं का था। लेकिन शिवजी ने क्या कहा, प्रहलाद को सामने रखा, बोला कि ये आपका प्रहलाद भी डरा हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि है खुद अपना डर। कभी कभी लोग ये प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रश्न पूछते हैं, नहीं सबका ऐसा कहना है, कैसे तो मेरा कुछ संशय नहीं है, लेकिन सबका ऐसा कहना है। तो खुद का प्रश्न पूछा ना, टॉक अबाउट यू, ऐसा नहीं, तो ये स्वभाव होता है। यानी इधर शिव जी ने कहा कि आप भक्तसल हो, अगर खुद का नाम लेते, अन्य देवताओं का नाम लेते, उनको मालूम है कि इनको तो देखने वाले भी नहीं है, क्योंकि हम सब तो सकाम है। तो इधर प्रहलाद को सामने रखा, उनका तत्सुतम प्राह्य उपाश्रितम, आपका शरण लिया है। अस्तित्व में शिवजी इस बात को कह रहे हैं कि हम आपका शरण लिया है, लेकिन माध्यम किसका रखे, प्रहलाद का माध्यम रखे, क्योंकि तत्सुतम प्रत्य उपाश्रितम भक्तम ते भक्तवत्सला, हे भगवान, हे नरसिम्हदेव, हु इज स्टैंडिंग नियर बाय एज फुल्ली सरेंडर डिवोटी, प्लीज प्रोटेक्ट। आप भक्तवत्सल हो ना, तो भक्तवत्सल होने के नाते कम से कम प्रहलाद के वास्ते तो आप अपना गुस्सा शांत कर दीजिए, ताकि उसका फायदा हम भी ले लेंगे। तो ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, भगवान रक्षा करते हैं भक्तों को, लेकिन एक शुद्ध भक्त को रक्षा करने के लिए अनेकों प्रकार के सकाम भक्त है, पके हुए बराबर भक्ति नहीं करते, वो भी बच जाते हैं। केवल एक शुद्ध भक्त का शरण लेने से बाकी जितने भी जो भले ही परिपक्व नहीं भक्ति में, उनको भी वही फायदा प्राप्त होता है भगवान की कृपा का। जैसे एक छोटा सा स्टोरी बताता हूं, एक चार लोग थे, वो बहुत भयानक सा तूफान में फंस गए थे जंगल में रास्ते में। तो वो चारों ने क्या किया, एक गुफा में जाके रक्षा लिया। ये चारों में आर्गुमेंट हुआ, एक ने कहा हम चारों में ये एक पापी है, इसकी वजह से हमको इतना बड़ा दुर्घटना को सामना करना पड़ रहा है, वो पापी अगर चले जाए तो हम सब बच जाएंगे, क्योंकि नहीं तो मर जाएंगे हम लोग। कैसे पता लगे कौन पापी है? तो हम क्या करेंगे, एक एक निकलेंगे, एक बाहर जाएगा, तो जैसे बारिश समाप्त होगा, शांत हो गया वातावरण, तब इसका मतलब है अभी वो पापी व्यक्ति है, उनको साथ में लेके नहीं जाना है, बाकी तीनों जाएंगे। तो पहला एक व्यक्ति गया, तो जाके देखा तो बारिश तो रुका नहीं, इसका मतलब तो मैं पापी नहीं हूं, है कि नहीं? शर्त के हिसाब से पापा, देखो मैं पापी नहीं हूं, ये आप तीनों में से एक। तो बाद में दूसरा व्यक्ति डरते डरते गया बाहर, जगह तो वो तो और भयानक सा तूफान आंधी आ रहा है, लेकिन मतलब पापी नहीं, तो भी वापस आया। तो मतलब बाकी दो लोग हैं, तो उनमें से एक बाहर गया तो फिर भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा वैसा। इसका मतलब है कि तीन लोग बच गए, तीन लोग पापी नहीं है, हम तीनों अच्छे हैं, तुम एक पापी व्यक्ति हो, तुम जाओ दिखा मत कर। तो डरते डरते गया, मैं भी पापी व्यक्ति हूं, इसलिए इतना भयानक सा तूफान आंधी मेरे वजह से आ रहा है, इनको क्यों परेशान करो। बेचारा वो शांति से नम्रता से सोचा कि मैं बहुत पापी हूं, बहुत सारा पाप कार्य किया हूं, भगवान का स्मरण करते हुए क्या किया, वो बाहर गया। जैसे बाहर गया, वो जिस गुफा में थे उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर था, वो नीचे गिरा, वो तीनों मर गए। तो अस्तित्व में ये तीन लोग बचे हुए थे, क्यों बचे हुए थे, तो इसका शरण लिए थे ना, ये अच्छा व्यक्ति का, इसके लिए बचे हुए थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये हम सोचते हैं कि वी थिंक दा मैं अच्छा व्यक्ति हूं, आई एम वेरी परफेक्ट पर्सन, ये सारे जो चूजे इसकी वजह से, इसका पाप की वजह से हो रहा है, नहीं। तो कभी कभी एक शुद्ध भक्त का शरण ग्रहण करने से हमारे जितने बुरे कर्म हैं उसका फल परिणाम नहीं मिलते, तब तक जब तक शरण ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए इधर शिव जी कहते हैं, देखिए कि प्रहलाद जी है ना, इनकी इनकी वजह से आप गुस्सा जो है वो शांत कर दीजिए, ताकि हमारा भी गुस्सा, हाँ, हमारा डर भी समाप्त हो जाएगा। ये भाव से शिव जी इस प्रार्थना को करते हैं कि अस्तित्व में प्रलय का समय में आपको कोप दिखाना चाहिए, ये बात है। और दूसरी बात है कि हिरण्यकशिपु का वध हो गया है, इसलिए आप अपना गुस्सा शांत करो, अभी आप ये गुस्सा को देख के ये जितने भी देवता भयभीत है, आपका प्रहलाद भी भयभीत है, कम से कम प्रहलाद की वास्ते तो आप कर दो। अस्तित्व प्रहलाद भयभीत नहीं थे, ये बात को हम बाद में प्राप्त होता है, प्रहलाद जरा सा भी उनके हृदय में कोई डर नहीं था, डर था देवताओं का, डर देवताओं का डर क्या था कि प्रलय हो जाएगा, वो डर था, वो डर इस श्लोक में शिवजी ने निकाल दिया। सारे देवताओं को उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रलय जो है वो करने के लिए नहीं आए, अंत काल में होता है, लेकिन ये कोप जो है वो शांत हो जाएगा प्रहलाद अगर स्तुति करेंगे तो। अभी इंद्र नेक्स्ट क्या किया, ब्रह्मा जी ने भेजा, ब्रह्मा जी बड़ा ऑर्गेनाइजर थे, सारे देवता लोग लाइन में खड़े हैं, अभी नरसिंह देव उधर बैठे हैं और प्रहलाद भी है, और ब्रह्मा जी एक प्रिंस जैसा, पहले उन्होंने स्तुति किया कुछ नहीं हुआ नहीं, बाद में शिवजी को बुलाया, शिवजी ने स्तुति किया कुछ हुआ नहीं, तो ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र तुम आके कुछ करो। तो इंद्र तो टिपिकल प्रार्थना करते हैं, इंद्र का स्वभाव के अनुसार, इंद्र कौन है, सारे देवताओं का राजा है, और उनका एक ही प्रॉब्लम है इंद्र का, वो क्या है, वो अत्यंत आसक्त है अपनी पोस्ट से, वो अपनी पोस्ट को संरक्षण करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अस्तित्व में बड़ा हास्यात्मक प्रार्थनाएं है इंद्र का, टीकाओं में प्राप्त होता है, ये गोवर्धन धारण करने के बाद, गोवर्धन लीला आप जानते हो, गोवर्धन धारण करने के बाद इंद्र वो आप सबको मालूम है, इंद्र का अहंकार टूट गया, उसके बाद इंद्र गए ब्रह्मा जी के पास, आपको मालूम है जैसे गोवर्धन बड़ा बारिश समाप्त होगा, इंद्र का अहंकार टूट गया, अभी इतना बड़ा पोस्ट में देवताओं का राजा है, अभी देवताओं का राजा होने के बाद उनका शक्ति काम नहीं किया तो अपना मुंह कहां दिखाएंगे, अपना चेहरा कहां दिखाएंगे, एक तो अहंकार नाश हुआ, अहंकार नाश होने के बाद भी तो अगर मान लीजिए किसी को शिक्षा प्राप्त होता है तो तुरंत जाके भगवान के जाके शरण होना चाहिए, शरणागत होना चाहिए, नहीं हुआ, इंद्र आया नहीं, इंद्र वापस इंद्र लोग गए, शर्मिंदा कर रहे कैसे जाऊं मैं इंद्र हूं, दोनों बातें चल रहा है, एक तो अभी हताश हुआ उनका पूरा अहंकार है वो नाश हुआ, उनका शक्ति जो है किसी को दिखाने लायक न रहा। दूसरी बात, तो मैं इंद्र हूं, अभी भी वो अहंकार है, मैं इंद्र हूं, मैं कैसे जाऊं। अभी कृष्ण को मालूम पड़ा कि भले ही वो कुछ भी ब्रजवासियों को मारने के लिए भी आए, लेकिन फिर भी इंद्र के वजह से तो सारे ब्रजवासी मेरे पास में 7 दिन 7 रात तक मैं उनका निकटतम सानिध्य को प्राप्त किया, भक्तों का घनिष्ठ था को मैं अनुभव किया, रसास्वादन किया। कृष्ण सोचने लगे, कृष्ण को मालूम था कि इंद्र का जो भले ही बहिरंगिक रूप में अहंकार को तोड़ा, लेकिन अंदर जो अहंकार अभी भी है, मैं इंद्र हूं। अगर इंद्र उसी समय आके मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया, कृष्ण इस प्रकार सोचने लगे। क्यों? एक पोस्ट में है, जो व्यक्ति राजा होता है जिसका पोस्ट का अहंकार होता है, वो साधारण जनता के सामने, पब्लिक के सामने आके माफी मांगना ये हो ही नहीं सकता। वो मर जाएगा लेकिन ये नहीं करेगा। अभी कृष्ण इंद्र के ऊपर दया दिखाए, मुझे मालूम ये तो करने वाला नहीं, उसका उद्धार तभी होगा जब वाके मेरा स्तुति करेगा, मैं उनको माफ कर दूं, मेरा अपना करुणा दिखाऊं। लेकिन मैं अपना करुणा दिखाने के लिए उनको शरणागत होना चाहिए, लेकिन उसका ये जो पोस्ट है, वो अहंकार है, उसको शरणागत होने में क्या कर रहा है, रुकावट पहुंचा रहा है। ये पब्लिक में शरणागत नहीं होगा, ब्रजवासियों के सामने आएगा नहीं। इसलिए अगले दिन कृष्ण ने क्या किया, वो गए गोवर्धन के पास गए, वैसे कारण बता के गए। क्या कारण बताया? मैं देखना चाहता हूं गोवर्धन ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि इंद्र ने वज्र के ऊपर, वज्र से उनको मारा था गोवर्धन को, उसके वजह से गोवर्धन ठीक ठाक है कि नहीं, ये देखने के लिए बहाने से गए कृष्ण। अस्तित्व में बहाना मात्र था, गोवर्धन को कुछ होता क्या? कुछ नहीं होता, संवर्तक बादल का भी का कुछ नहीं कर पाए। तो गोवर्धन तो कृष्ण धारण किए, उतना शुद्ध भक्त है, कृष्ण को मालूम है कि गोवर्धन को जरा सा भी कुछ चोट नहीं पहुंचा, लेकिन बहाना ये बहाना के गए। लेकिन कृष्ण कैसे गए? अकेले गए। वो भी कहां गए? गोवर्धन की तलेटी पे गए, उस स्थान में गए जहां कोई नहीं रहता हो, अकेले कृष्ण गए। कभी कृष्ण अकेले कहीं नहीं जाते, अगर जाते भी तो केवल कोई राधा रानी से मिलना है या कोई अन्य गोपियों से मिलना है, कुछ ना कुछ कारण किसी से मिलने के लिए जाते। लेकिन एकांत जगह कृष्ण गए। क्यों गए? क्योंकि उधर इंद्र आएगा और मेरा शरणागत होगा। अगर पब्लिक में वो शरणागत नहीं होगा, वो अकेले में ही करेगा, तो भगवान की अनुकंपा देखिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी इंद्र के ऊपर इतना करुणा भगवान का, भले ही इतना वो आसक्त है भौतिक चीजों से, अपने पोस्ट से आसक्त होने के बाद भी, ये बहुत विचार अगर भागवत से भी आदि लीलाओं से करेंगे, ये अनरीजनेबल लगता है। अनरीजनेबल मतलब इसका भगवान की इस इंद्र के ऊपर इतना करुणा, इतना दया का कोई कारण नहीं है। कोई शुद्ध भक्ति किया है तो उसके ऊपर दिखा है तो ठीक है, समझ सकते हैं। ठीक है, कभी कभी एक आध व्यक्ति गलती कर देता है तो भगवान माफ कर दे, ठीक है। लेकिन बार बार यही गलती करो, अपराध करो, इतना सब कुछ करने के बाद भी इंद्र को पता नहीं भगवान कैसे संभाल के रखते हैं। अगर सच में है भगवान की अनुकंपा क्या है, अगर वो देखना है, देखिए ऐसे इंद्र जैसा भक्त को भी वो संभाल के रखते हैं। अगर सच में भगवान का जो धैर्यता को अगर जानना है, तो ये इंद्र के साथ जितने भी पास्ट टाइम्स है, उनका जो लीला है वो देखिए। अभी आप सबको मालूम है ये लीला कि इंद्र भगवान के शरण, वो देखिए ये जो नरकासुर है, ये भौमासुर बोला जाता है, भौमासुर नरकासुर दोनों एक ही है, एक ही व्यक्ति का नाम है। जैसे दिवाली हमने मनाया है, वो दक्षिण भारत में दिवाली मनाया जाता है ये नरकासुर का वध की वजह से, क्योंकि नरकासुर ने प्रार्थना किया था भगवान से, अरे मैं मर रहा हूं लेकिन मैं तो आपका पुत्र हूं, और उन्होंने प्रार्थना किया था सत्यभामा से, मैं आपका पुत्र हूं, देखो मैं तो मर रहा हूं, लेकिन पुत्र होने के नाते कुछ ना कुछ तो मुझे आशीर्वाद दे के जाओ। तो सत्यभामा ने कहा कि क्या आशीर्वाद चाहिए नरकासुर को? तो नरकासुर ने कहा मेरा मृत्यु को लोगों में मनाना चाहिए, उसको उत्साह के रूप में मनाना चाहिए। तो वैसा उन्होंने वरदान मांगा, तो इसलिए उसके उपलक्ष्य में इस प्रकार दिवाली मनाया जाता है, नरकासुर का वध। तो ये नरकासुर का वध आपको मालूम है, तो ये क्यों हुआ था? इंद्र ने प्रार्थना किया भगवान से, हे भगवान देखो इतना नरक हुई, स्वर्ग को भी नरक बना दिया इसने, तो ऐसा
प्रार्थना किए, मेरे माँ जो अदिति है उनके कुंडलों को भी उन्होंने लेके गया, मेरा वरुण देव का छाता लेके गया और अनेकों प्रकार के तहस तहस किया, आप जरा कुछ कीजिए। तो भगवान ने इंद्र के ऊपर दया दिखाया, चलो तुमको मदद करता हूँ। सत्यभामा को साथ में लेके गए। अब देखिए, इंद्र को संतुष्ट करने के लिए भगवान ने अपना पुत्र को मारा है कि नरकासुर कौन है? भूदेवी का पुत्र है। जब वराह के रूप में आए भगवान श्री कृष्ण, तो वराह देव के रूप में आके धरणी को उन्होंने अपने स्थान पे रख के तब उसको गर्भ प्रदान किया। वो पृथ्वी के गर्भ से ये एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था नरकासुर या भौम असुर। भूमि से उत्पन्न हुआ, इसका नाम, उनका नाम है भौम। लेकिन उनका गलत संगति की वजह से वो असुर का प्रवृत्ति स्वीकार किया। अभी इंद्र का स्थान देखेंगे, वैसे शुद्ध भक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एकदम बहुत सकाम भक्त है। लेकिन उस सकाम भक्त इंद्र जो बार बार गलती करता है, इतना हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है, इतना कामुक, इतना आसक्त, लेकिन कृष्ण का शरण लिया है, तो इंद्र को संरक्षण करने के लिए भगवान ने क्या किया? अपना पुत्र नरकासुर को वध किया। ये स्पेशल भक्त है इंद्र। स्पेशल मतलब वो कृष्ण की दृष्टिकोण से, वैसे शुद्ध भक्ति के दृष्टिकोण का स्पेशल नहीं है, कृष्ण के दृष्टिकोण से इज ए स्पेशल पर्सन। तो ये सब कुछ हुआ, नरकासुर का वध हो गया और अपना जो जो भी नरकासुर ने चोरी करके गया था इधर से स्वर्ग से, उन सबको वापस लौटाने के लिए कृष्ण गए सत्यभामा के साथ। सत्यभामा के साथ क्यों गए? प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण इज ए हैंडपेक्ड हस्बैंड, जैसे हैंडपेक्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, जोड़ू का गुलाम। तो कृष्ण ने क्या किया था, एक पुष्प प्रदान किए थे रुक्मिणी को, पारिजात। तो सत्यभामा को गुस्सा है, अरे उनको दिया मुझे नहीं दिया। तो गुस्से को शांत करने के लिए, उनको तो खाली पुष्प दिया, मैं तो तुमको पूरा पेड़ दे देता हूँ, आई गिव यू फुल ट्री, ऐसा कृष्ण सत्यभामा को कहा। सत्यभामा ठीक है, मैं कब दोगे? देता हूँ, चिंता मत करो, थोड़ा शांत रहो, लेकिन मनाना पड़ता है। तो पत्नी को शांत करके तो सत्यभामा को लेके गए। तो कृष्ण ने सोचा कि इंद्र तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि अभी तो मैंने उनको पूरा राज्य लौटाया, उनका सब कुछ लौटाया, उनको अपना इंद्रत्व प्रदान किया, खाली वो स्वर्ग को, पूरा स्वर्ग को मैंने इंद्र को दिया है, खाली एक पेड़ को ले लूंगा, मुझे क्या कहेंगे इंद्र। तो एक पारिजात वृक्ष को लिए और गरुड़ जी के ऊपर रख के वो निकल रहे थे। तब तुरंत इंद्र तलवार लेके आए, ये पारिजात वृक्ष जो है ये इंद्र लोक का है, आप भूमि धरती पे लेके नहीं जा सकते हो, रख दो वापस, चोरी मत करो। अब देखिए, अभी बस दो मिनट पहले उसको पूरा स्वर्ग जिसने दिया, उसको उस स्वर्ग का पेड़ भी नहीं दोगे? अभी ऐसा कैरेक्टर है इंद्र। लेकिन फिर भी एक आचार्य शिलोशनाथ ठाकुर लिखते हैं कि भगवान के साथ इस प्रकार अन्याय करने के बाद भी, लेकिन फिर भी जब भी लीला होता है इंद्र के साथ भगवान लीला करते हैं। यानी दूसरे शब्दों में भगवान का इंद्र के ऊपर इतना अनुकंपा है कि जब तक कृष्ण लीला का चर्चा होगा तब तक इंद्र का नाम भी आएगा। और ये जो पारिजात का संबंध में जो लीला में अंत में सुखदेव गोस्वामी भी ये लीला का वर्णन करते करते वो कहते हैं कि अभी क्या करे, भगवान ने तो ठीक है उनसे वापस युद्ध किया, पारिजात को लेके गए, अलग बात है, लेकिन इंद्र का इस प्रकार व्यवहार को देख के क्या कहते हैं कि ये जो दुर्भाग्य है, ये स्वर्ग जो है, ये स्वर्ग का ऐश्वर्य जो है वो दुर्भाग्य है, वो मल के बराबर है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनका बुद्धि देखिए इंद्र का, अगर राजा इस प्रकार की स्वभाव है तो ये स्वर्ग जाके प्रजा के रूप में रहना कितना तुच्छ है, उधर जाना ही नहीं है, नरक बेहतर है उससे। नरक में ऐसा होता है क्या? नरक में नहीं होता है, कम से कम नरक में क्या होता है, व्यक्ति का किया गया जो पाप है वो क्षय होता है, लेकिन उधर स्वर्ग में क्या होता है, पुण्य क्षय होता है। कौन सा अच्छा स्थान है जहां
मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट में बैठे हो, आप कुछ अगरम वगरम चीजें खा रहे हो, ये क्या खा रहे हो आप? बीमारी खा रहे हो। आप हॉस्पिटल में जाओगे उधर आपका बीमारी दूर हो रहा है, कौन सा अच्छा जगह, हॉस्पिटल या रेस्टोरेंट, है कि नहीं? तो वैसे ही आप स्वर्ग जाओगे तो स्वर्ग में क्या होगा, पुण्य कट रहा है। नरक में क्या होगा, हो रहा है, पाप कट रहा है। कौन सा चीज चाहिए आपको, पुण्य कटाना चाहते हो पाप कटाना चाहते हो, तो कौन सा अच्छा जगह है? ठीक है तो उसको बोला जाता है विचार। तो हंसते इसलिए शास्त्र में जिस प्रकार जो जो बातों को प्रस्तुत किया गया है, सुनेंगे तो ऐसा चमत्कारी बात है हसरत ने। तो एक व्यक्ति ने कहा, जो मैंने को एक मेरे साथ जहाज में काम कर रहे थे, मैंने कृष्णा बुक दिया, उन्हें कहा कि मैं तो नास्तिक तो अति पापी व्यक्ति हूं, लेकिन मैं, उनका आदत था बहुत बहुत सारी किताबों को पढ़ना, हमें बुक वर्म है, कोई भी किताब मिलता पढ़ते हैं। तो मैंने कृष्णा बुक के दिया, ये भी एक किताब है ऐसा समझ के पढ़ो। तो उन्हें कहा कि ये जो मैं जो किताब तुम्हें दिया, मैंने कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, वो जो कृष्णा बुक दिया था, उन्होंने कहा कि मैं बचपन से अनेकों किताबों को पढ़ा है और उनका रुचि था साहित्य में। ने कहा साहित्य के दृष्टिकोण से मैं हर किताब को देखता हूं, लेकिन साहित्य के दृष्टिकोण से भी देखूं तो ऐसा जो ग्रंथ है कोई और है ही नहीं। इज नो स्क्रिप्चर, नो लिटरेचर लाइक दिस। इसका इसका महत्ता है, स्पेशलिटी है। तो क्योंकि इसके अंदर ऐसा ऐसा विचार है जो एकदम चमत्कार करने वाले विचार है। ठीक है, नहीं हो ऐसा इंद्र है, अभी वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान का। व्हाट इज ही डूइंग, ही इज ग्लोरीफाइंग, ही इज ट्राइंग टू ग्लोरीफाई कृष्णा। ये हमेशा उनका यही बात रहता है, मैं अपना पोस्ट को संभाल के रखूं, अपना जो स्थान है उसको ना छोड़ूं। अभी मैं फिर वापस गोवर्धन लीला पे आऊंगा। आप सबको मालूम है कि भगवान को मालूम है कि इंद्र भले ही अहंकार टूटा है, लेकिन फिर भी वो राजा, अपने आप को राजा मानता है। वो राजा जो है सबके सामने झुकेगा नहीं मुझे, इसलिए एकांत स्थान में गए। तब इंद्र सीधा भगवान के पास जाके शरणागत हो सकते हैं ना, नहीं गए, ब्रह्मा के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा तुम जाओ, तुम्हारा सब अहंकार टूट गया है, जाके शरणागत हो। इंद्र को धक्का दे के भेजा। तो ब्रह्मा जी को मालूम था ये इंद्र जाएंगे तो भी हिचकिचाएंगे, क्योंकि झुकेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे साथ में सुरभि गाय को लेके जाओ। ये सुरभि जो है गोलोक की सुरभि नहीं है, एक लोक है जहां केवल गाय निवास करते हैं, भौतिक जगत का एक लोक है गोलोक करके। वैसे गोलोक वृंदावन जो भगवान का धाम अलग है, और ये भौतिक जगत में एक लोक है जिसका नाम है गोलोक, जहां गाय निवास करती है, जिसका नाम है सुरभि गाय निवास करती है, ये भी भौतिक है। तो ब्रह्मा जी ने सुरभि गाय को कहा कि उनके साथ में जाओ। तो गाय तो स्वाभाविक भक्त है भगवान के, तो गाय, इंद्र गाय के साथ गया। अस्तित्व में दूसरे शब्दों में इसी बात को कहा जाए, ये गाय इंद्र को लेके गए, चलो मेरे साथ। अब इंद्र तो आयुर्वाद के ऊपर बैठा था, और साथ साथ में गाय भी, सुरभि गाय भी साथ साथ में जा रही है। जाते जाते ये भगवान उधर खड़े हैं, उनको मालूम है इंद्र का इंतजार कर रहे, मैं उनके ऊपर कब कृपा बरसाऊं, उनका मैं सुतियों को मैं स्वीकार करूं। खड़े होने के बाद सुरभि गाय ने कहा इंद्र को जाओ। इंद्र का भी देखिए क्या स्थिति है, वो ऐरावत के ऊपर बैठ के जा रहा है। नीचे उतर के जाओ कृष्ण के पास, नहीं मैं ऐरावत, अभी मैं अभी भी राजा हूं, अभी मैं इंद्र हूं। पर इंद्र तो नष्ट हो गया है, वज्र काम नहीं किया, तुम्हारा आज्ञा काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया, वो सब भूल गया, मैं ऐरावत तो है ना, मैं इस सीट के ऊपर बैठूंगा मैं। तब सुरभि गाय डांटी इंद्र को, उतरो इधर से, पैदल जाओ। तो इंद्र घबराते पैदल गए, और इंद्र का घबराहट किसका था, क्या घबराहट था, भगवान के पास जाने से पहले वो सोचते हुए जा रहे, हे भगवान आपने मुझे पनिशमेंट दे दिया है। अस्तित्व में भगवान ने इंद्र को पनिशमेंट दिया था, नहीं दिया, कोई दंड नहीं दिया। अभी इंद्र के मन में ऐसा हुम आया, तो वैसे तो दंड मुझे दिया नहीं है, अगर दंड देंगे तो क्या दंड देंगे? मेरा पोष छीन लेंगे। अभी वो इंद्र का पूरा प्रार्थना में एक ही बात कहता है इंद्र कृष्ण को, आप तो भक्तों का संरक्षण करने वाले हो, दूसरे शब्दों में मेरा पोस्ट का संरक्षण करने वाले हो। आपने तो दंड दे दिया मुझे, पनिशमेंट दे दिया, क्योंकि मैं जित पोस्ट में हूं, मैंने किसी को आज्ञा दिया, वो आज्ञा सिद्ध नहीं होना ही मेरे लिए दंड है। ध्यान में रखिए इस बात को, मैंने जो आज्ञा दिया है, द ऑर्डर, जैसे राजा कोई ऑर्डर करता है, अगर राजा के लिए दंड क्या है, वो ऑर्डर पालन नहीं होना, वो सिद्ध नहीं होना, वही दंड है, उससे बढ़कर क्या दंड है। मेरा तो पूरा अहंकार टूट गया है, अस्तित्व में उसको कुछ सपरेट नहीं किया। तो कृष्ण एकदम हंसते 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 सारे प्रार्थनाओं को स्वीकार किए, ही एक्सेप्टेड ऑल द प्रेयर्स, और इंद्र शुद्ध भक्तों का गुणगान करते हैं उस प्रार्थना में। ऐसे वो प्रार्थना को भी करना चाहता था, लेकिन फिर भी इन्हें सोचा कि ये इसको ले, शुद्ध भक्त का प्रार्थना भी करते हैं, शुद्ध भक्त का गुणगान करते हैं, और बाद में कहते हैं ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है, मेरा लक्षण नहीं है। इसलिए आप जानते हो मैं क्या चाहता हूं, आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, मेरा जो पोजिशन है उसको आप छीनो मत। तब सुरभि गाय आई, आके इंद्र को कहा उन्होंने कि आप जो अपना इंद्रत्व है कृष्ण को दे दो। तो इंद्र को घबराहट हुआ, मैं भगवान को इंद्रत्व दे दो? तो उसने कहा कि दे दो ना, तुम दे दो वापस आ जाएगा तुम्हारे पास, चिंता मत करो, अगर तुम अपने पास रखोगे तो छीन लिया जाएगा, अगर भगवान को दे दोगे, इफ यू गिव इट टू कृष्ण, तो कृष्ण जो है वापस तुमको दे देंगे, तुम ही इंद्र रहोगे। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है जो सकाम भक्त भी समझ लीजिए, अगर कोई भौतिक चीज चाहिए भी आपके पास रखना चाहते हो उसको कृष्ण को दे दो। इवन इफ यू वॉन्ट समथिंग गिव इट टू कृष्ण, अगर सच में आपके पास ये भौतिक चीज को रखना चाहते हो तो आप क्या करो, उसको गिव इट टू कृष्ण। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, भौतिक चीजों का निश्चित रूप में नाश होगा, लेकिन वही भौतिक चीज को अक्षय बनाना है तो भगवान को अर्पण करना है। और भगवान का स्वभाव है कि अगर आपने उनको कुछ दिया तो निश्चित रूप में उसे ज्यादा ही देंगे, वो चीज भी वापस करेंगे और ज्यादा ही देंगे। अच्छा, पार्किंग वाले उठा देंगे। ये दो गाड़ी है, MH02 Y या V 1617 MH04 AW 394, ये दो गाड़ियों के जो चालक है वो कृपया करके आप जाइए, जाके उसको आप हटाइए, नहीं तो आपका गाड़ी जो है वो पुलिस स्टेशन में मिलेगा। ठीक है, नहीं हम किसका है, इनका है गाड़ी, और को दूसरा एक और गाड़ी, ठीक है। तो सुरभि गाय ने इंद्र को कहा कि इंद्र तुम जाओ, जाके तुम कृष्ण को अपना इंद्रत्व को प्रदान करो। तब इंद्र ने एक सिंहासन बनाया और अपना इंद्रत्व अपना मुकुट निकाल के कृष्ण को, जो वास्तविक इंद्र है, भगवान कृष्ण का एक नाम है इंद्रा। जब वैदिक हवनों में, ऋग्वेद में हवन का जो श्लोकों में इंद्राय स्वाहा, यानी वो इंद्र कौन है, कृष्ण है, ही इज द रियल इंद्र। तो इंद्र ने क्या किया, अपने इंद्रत्व को भगवान को प्रदान किया। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पोस्ट संभाल के रहेगा, तुम वापस ले लो करके, सुरभि का अभिषेक वगैरह हुआ। तो ये ध्यान में रखना चाहिए किस प्रकार इंद्र प्रार्थना करते हैं। इसी इंद्र का जो कैरेक्टर है, इंद्र का स्वभाव मालूम होने के बाद हमको प्रार्थना पढ़ना चाहिए, तब मालूम पड़ता है कि प्रार्थना का विशेष भाव क्या है। तभी जैसे मान लीजिए कोई प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना कौन कर रहा है उनका जो भाव जान के ये प्रार्थनाओं को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए, नहीं तो इतना उसका रस प्राप्त नहीं होगा। तो वैसे तो अभी आज का श्लोक के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, विल जस्ट डिस्कस फॉर फ्यू मिनट्स, ज्यादा इतना नहीं है, इसमें दो विशिष्ट बातें हैं। सबसे पहला है प्रत्यानिता मतलब रिकवर्ड। सबसे पहला इंद्र ने यही बात बताया, नमः कुछ तो बोल सकता है, कुछ नहीं, डायरेक्टली क्या कहा, हा मेरा राज मुझे मिल गया। सबसे पहला शब्द यही प्रार्थना में, हे भगवान आपने मुझे अब मेरा राज्य दे दिया, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। प्रत्यनिता परम भवता त्रयता न स्वभागा, ने कहा कि आप क्यों हो, भवता आपके द्वारा, हे महान परम, हे महान भगवान, कि भवता आपके द्वारा त्रयता न स्वभागा। स्वभागा मतलब शेयर्स इन सैक्रिफाइस। दूसरी बात, आपने केवल मुझे मेरा राज ही नहीं लौटाया, आपने क्या किया भगवान, ये जो हिरण्यकशिपु मेरा राज्य को ही नहीं, देवताओं को जब आहुति दिया जाता है वो सारे आहुतियों को खुद ले लेता था, मेरे पास पहुंचे नहीं देता था, मेरे पास आता ही नहीं था। अभी हिरण्यकशिपु मर गया ना, अभी सारा आहुति मेरे पास आएगा, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, मेरा जो खाना है मुझे मिला। अब देखिए कितना सकाम है, एक तो राज मिला और दूसरा क्या है, मुझे अपना, अब अपना जो यज्ञ का जो इधर इंद्राय स्वा इधर नामवा ऐसे देवताओं को आहुति देते ना, वो सब भी मुझे मिला। वैसे तो आपके पास ही जाने वाला है क्योंकि सारे देवता लोग कृष्ण को ही देते हैं, लेकिन वो मेरे द्वारा जाना चाहिए क्योंकि मैं आपका पंडा हूं। मेरे द्वारा ही जाना चाहिए, अगर हिरण्यकशिपु आपको डायरेक्टली दे सकता था लेकिन वो देता नहीं, मैं अगर मुझे दोगे तो मैं दूंगा आपको। मेरा पोजिशन फिर वापस आ गया कि भवता स्वभागा, यानी आपका जो भाग, हमारा मेरा जो भाग है जो यज्ञ में, वो यज्ञ मुझे वो भाग प्राप्त हो गया। और दूसरी बात है, हम आपका स्मरण करते, बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक बात, इस बात को चर्चा करेंगे उसके बाद हम समाप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि कालग्रस्तम कियाद इदम अहो नाथ सुश्रूषताम ते, तो उन्होंने कहा कि हम आपके भक्त हैं, वी आर योर डिवोटीज। भक्त मतलब कौन है, भगवान का हमेशा स्मरण करता है, मन मनाभो मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, वन हू थिंक्स ऑलवेज ऑफ कृष्णा इज अ डिवोटी। तो इंद्र ये सकाम भक्तों का प्रॉब्लम को व्यक्त कर रहा है। सकाम भक्तों का प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है, जब कोई उनका भौतिक स्थिति को छीन लेता है या भौतिक स्थिति में खतरा दिखाई पड़ती है, भगवान के बारे में स्मरण नहीं कर पाते। जैसे अम्बरीश महाराज, उनके सामने खतरा था, दुर्वासा मुनि ने भयानक सा एक असुर को प्रकाशित किया, भूत को प्रकाशित किया, अम्बरीश महाराज के मन में जरा सा ये भगवान का विस्मृति नहीं हुआ। कुतश्च न बिभ्यति सर्गा और नरकेशु तुल्य निंदास दर्शन दर्शन। भागवत में श्लोक है कि अम्बरीश महाराज ने प्रार्थना भी नहीं किया, हे भगवान आके मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है, नहीं, बिल्कुल कुछ भी डर नहीं था, मृत्यु सामने है, भयानक सा जो वो असुर है वो आके मारने के लिए तैयार है, लेकिन एकदम अभय अवस्था में खड़े हैं। क्यों, अम्बरीश महाराज इतना ऐश्वर्य के साथ रहने पर भी बिल्कुल रंच मात्र भी आसक्ति नहीं था। ये सकाम भक्त होते हैं, जब उनका भौतिक परिस्थिति ठीक रहता है तब तक वो भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन जैसा वो खतरे में आते हैं, उनके भौतिक स्थिति को छीन जाने की खतरा आता है, तुरंत वो, अरे ये प्राप्त होना चाहिए, मुझे छीन जाएगा, सब उनका पूरा भक्ति नष्ट हो जाता है, भक्ति खत्म हो जाता है। तो इंद्र विशेष करके भगवान नरसिंह से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप जानते हो मैं कौन हूं, मैं तो बहुत सकाम भक्त हूं, प्राय अनेकों देवता लोग भी अनेकों कामना अनेकों भौतिक इंद्र तृप्ति के साथ आसक्ति है हमारा, अगर ये भौतिक इंद्र तृप्ति या हमारा पोस्ट या पोजीशन अगर नहीं दोगे तो हमारा भक्ति नहीं होगा। आप चाहते हो हम आपका भक्ति करें तो हमको ये भौतिक सुविधा चाहिए, तो जो व्यक्ति भौतिक सुविधा का आशा करता है भक्ति करने के लिए, इसका मतलब अभी वो शुद्ध भक्ति के स्तर में नहीं है। शुद्ध भक्त मतलब वो जानता है भक्ति शुद्ध आध्यात्मिक कार्य है और ये कोई भौतिक चीज के ऊपर निर्भर नहीं करता है। इट डजंट डिपेंड ऑन एनी मेटीरियल थिंग, ये शुद्ध भक्ति है। लेकिन इधर इंद्र कहता है कि अगर मुझे मेरा पोस्ट नहीं होगा तो मैं भक्ति कैसे करूंगा, अगर मुझे गाड़ी नहीं दोगे तो मैं प्रचार कैसे करूंगा, अगर मुझे ये सुविधा नहीं दोगे, एसी रूम नहीं दोगे, कैसे मैनेज करूंगा। ये सब कैसा है, इंद्र जैसा प्रवृत्ति है। तो शुद्ध भक्त इस ये इन परिस्थितियों से परे हैं। और आगे कालग्रस्तम किया इदम महो नाथा शुश्रूषवान्ते, तो इंद्र कुछ शुद्ध भक्तों का वर्णन करते हैं। मैं तो इस प्रकार का नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं हे भगवान, जो शुद्ध भक्त होते हैं शुश्रूषवान्ते, जो केवल आपकी सेवा का ही कामना करते हैं, वो मुक्ति का भी मुक्ति को भी तुच्छ मानते हैं। इवन लिबरेशन भी उनके लिए कुछ नहीं है। तब मृत्यानाम किमुदाशितः, भौतिक चीजें जैसे कोई भौतिक सुख है वो क्यों परेशान करता है इनको, क्यों नहीं परेशान करता, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। जब वो मुक्ति को भी पूछते नहीं है, जो नरसिंह परे किम जो आपके प्रति एकदम बिल्कुल शरणागत होके आसक्त होके आपके प्रति जो प्रेम को विकसित किया है, वो प्रेम में जो आपका सेवा करता है नरसिंह देव, उनके लिए जब मुक्ति ही तुच्छ है तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति की क्या कहना, किम मतलब क्या कहना, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट। भागवतम में ये जो तुलना है बहुत जगह आया है। श्लोक भूल गया, जैसे दो जगह ये श्लोक आता है भागवत में, सेम श्लोक दो जगह है। तीसरे स्कंद में देवयुति कपिल संवाद में ये बात आता है, प्रसंगम अजरम पाशम, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवयो विधु सैव साधु कृतो मृत्यानाम किमुताशितः। मृत्यानाम किमुताशितः ये शब्द है, मृत्यानाम किमुताशितः, मृत्यानाम मतलब जो मरने वाला व्यक्ति है उनका आसक्ति किस में रहता है, भौतिक चीजों में रहता है, वो चाहिए चाहिए। और जो भगवत भक्ति संगस्य, भगवान की भक्त का संग जिसको प्राप्त हुआ है, शुद्ध भक्ति जिसको प्राप्त हुआ है, वो मुक्ति को भी पूछता नहीं है, तो ये छोटा मोटा इंद्र तृप्ति के क्या कहना। जैसे अगर कोई एक करोड़ रुपए का भी फिक्र नहीं करता है तो उसको 10 रुपए क्या फर्क पड़ता है, उसको 10 रुपए का पूछता ही नहीं है, है कि नहीं। तो वैसे ही इंद्र इस बात को कहते हैं, जो वो शुद्ध भक्त है आपका वो कुछ और ही है। जैसे प्रहलाद का गुणगान किया जा रहा है, प्रहलाद डरा हुआ नहीं है, इंद्र ने देखा उस बात को और प्रहलाद को कितनी बार मारने के लिए प्रयास किया लेकिन उनको जरा सा भी डर नहीं लगा। लेकिन हमको डर लग रहा है, ये डर क्यों है, क्योंकि हम भौतिक चीजों से आ सकते हैं, हमारे पोस्ट से आ सकते हैं, हमारे पोजिशन से आ सकते हैं, भौतिक जो चीजें हैं उनके प्रति आ सकते हैं। लेकिन आपका प्रहलाद जो है वो किस प्रकार है, नरसिंह परे ही आपके प्रति एकदम आसक्त हुए किंकर है, शुद्ध भक्त है, उनके लिए मुक्ति भी कुछ नहीं है, तो भौतिक चीजों के क्या कहना। आप ये मत सोचिए कि मैं इन भौतिक चीजों की आशा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं प्रहलाद जैसा नहीं हूं। इनडायरेक्टली प्रहलाद का स्तुति इस श्लोक में हुआ है, ये बात को समझना चाहिए। तो एक एक देवता की प्रार्थना आगे बहुत सुंदर सुंदर है, और अंत में जो प्रहलाद की प्रार्थना को आप ध्यान से पढ़ना चाहिए। भागवतम में कथाएं हैं, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, जब भागवतम को आप अध्ययन करोगे पढ़ोगे, कथा जब तक आता है मजे से पढ़ते हैं, लेकिन प्रार्थना जब आता है तो पेज घुमा के आगे चले जाते हैं, ये मत कीजिएगा। प्रार्थनाओं को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि प्रार्थना ही सारा लीला का सार है। लीला नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रार्थना जो है वो सार रूप वस्तु लीला का, उसको पढ़ना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, उसको आस्वादन करना चाहिए। और जितना हो सके उतना आप ये भागवत क्लास में आके, जैसे संडे को आते हैं, लेकिन फिर भी अगर फ्री है तो हर दिन होता है भागवतम क्लास, हर दिन सुबह 8 से 9 बजे भागवतम क्लास होता है। अगर आप फ्री है तो रोज आके उसका फायदा लीजिए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रिय ग्रंथ है भागवतम, और भाई वैष्णवानाम प्रेम, वैष्णवों के लिए प्रिय है। अगर प्रेम है तो उसके लिए आपको समय देना होगा, सब कुछ देना होगा। तो ये निवेदन के साथ मैं समाप्त करूंगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो पूछे, एनी क्वेश्चन? अच्छा प्रश्न है, मरने के समय ज्यादा भौतिक आसक्ति क्यों होता है कि नहीं? उसका पहला कारण यह है, ध्यान में रखिएगा, मरने के समय मतलब वृद्धावस्था में, आपने देखा होगा ऐसा कहावत भी अंग्रेजी में, ओल्ड एज इज सेकेंड चाइल्डहुड, बुढ़ापा जो है वो दूसरा बचपना है। बच्चे को कोई चीज नहीं दोगे तो हट पकड़ लेता, रोता है, सब कुछ करता है कि नहीं? वही परिस्थिति बुढ़ापा में भी है। और वृद्ध व्यक्ति है, उसको बोले तो आप कुछ लेके आओ तो नहीं मिला तो वो भी हट पकड़ लेते, चाहो बच्चे से व्यवहार करते हैं, अत्यंत आसक्त रहते। क्यों मालूम है उसका? ये एक ही कारण है, वो युवावस्था में भक्ति नहीं किया है। जो युवावस्था में भक्ति नहीं करता है वो वृद्धावस्था में इतना तड़पता है, इतना तड़पता है, उतना दुख भोगता है, आप पूछो मत। वो कुत्ता भी अच्छा है, ये सत्य बात है। क्योंकि मैं बहुत सारे अपने घर में भी, ये भक्ति में आने से पहले भी मैं इसी प्रश्न था, जितने वृद्ध लोग है, दादा है, परदादा, उन लोगों को देखता था, उनका स्थिति को देख के बड़ा दया आती थी। ये नहीं कि वो कुछ शारीरिक तरीके से बीमार है, उसके वजह से नहीं, उनकी मानसिकता को देख के जरा सा भी उनको थोड़ा सा कमी हो जाए किसी चीज में, वो गुस्सा हो जाना, डांटना, चिड़चिड़ाना, ये सब हो जाता है। मैं सोचता था कि मैं अच्छा हूं उन लोगों से, भले ही अनेकों खेल कूद में आ सकता है, लेकिन ये अच्छा हूं मैं, अच्छा हूं, आई एम बेटर, आई एम मोर मैच्योर्ड। उसका एक ही कारण है, अगर बचपन में, युवावस्था में अगर भजन नहीं करेंगे, वी डोंट डू इट, वृद्धावस्था में ऐसा हो, क्यों फ्रस्ट्रेशन होगा? युवावस्था में क्या है, इंद्रियों को भोगने की भौतिक इच्छाएं वो रहता है, और इच्छाओं को पूर्ण करने का शक्ति भी रहता है। वृद्धावस्था में क्या होता है, ये इंद्रिय तृप्ति जो है वो बढ़ता है, और इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने की क्षमता है वो कता है, यानी इन दोनों के बीच में जो फासला है वो बढ़ता जाता है, और वो फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन दुख मतलब यही है, इच्छा और इच्छा की पूर्ति के बीच में जो फासला है उसको दुख कहा जाता है। और जैसे हमारे उम्र बढ़ता है, इच्छाएं बढ़ती हैं, इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता वो कम होती है, इन दोनों के बीच में फासला जो है बढ़ता है। इसलिए युवावस्था में क्या करना है, इंद्रियों को, इंद्रिय विषय वस्तुओं की भोग, इंद्रिय तृप्ति जो है उसको कम करने का प्रयास करना है। और यह निश्चित बात है, जितना व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है उतना उसका शक्ति क्षीण हो जाता है, और जो इंद्रियों को संयम में रखता है उसका शक्ति बढ़ता है। जो भक्त है, भजन करता है, उसकी भौतिक इच्छाएं कम होती है और उसका शक्ति जो है वो बढ़ता है। दूसरे शब्दों में, और सुखी होता है, जितना उम्र बढ़ता है और सुखी होता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि कौमारे ताचरेत प्रज्ञ, प्रहलाद ने भी बात को कहा, क्यों? अगर ऐसा कोई करता है तो आपके जैसे प्रश्न नहीं उत्पन्न होगा आगे किसी का। ठीक है, हरे कृष्णा। विल टेक टाइम इज ओवर, जस्ट विल टॉक द प्राइवेटली। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो प्रवचन का सार प्रभु जी ने अंत में बताया प्रश्न की उत्तरी में, कि जो लोग युवा अवस्था में भक्ति नहीं करते हैं, वृद्ध अवस्था उनका बहुत ही दयनीय हो जाता है, बहुत ही उनकी परिस्थिति गंभीर हो जाती है। हम देखते हैं समाज में बहुत बड़ी समस्या बना हुआ, वृद्धों का संरक्षण। लेकिन अगर युवा अवस्था में जो भजन किए हैं, वास्तव में उनका वृद्धावस्था बहुत सुंदर बन जाता है। वैसे तो वो इंतजार करते हैं कि हमारा भगवान से कब मिलन होगा, अभी इस समय आ गया है। तो सर्वप्रथम हम हिज ग्रेस कमलोचन प्रभु का धन्यवाद प्रकट करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सभी भक्त बैठी, और बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। आप सभी जानते हैं कल तुलसी विवाह है, तो यह उत्सव मंदिर में मनाया जाएगा। कल शाम को 5 से 7 बजे के बीच में तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाएगा, तो आप सभी इसमें भाग लीजिए। विवाह उत्सव के बाद सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है, तो आप सभी कल शाम को 5 से 7 बजे इस तुलसी विवाह में उपस्थित रहिए। और आते संडे को जो रविवार का प्रसाद बनाने और वितरण करने का सेवा होता है, वो मीरा रोड के ग्रुप द्वारा है। शुक्रवार को जो मीरा रोड में प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में जो भी भक्त आते हैं उनके द्वारा आते रविवार को प्रसाद वितरण और बनाने का सेवा दिया गया है। तो भक्त अलग इस बात का ध्यान रखें, प्रातः में भोर में ही आ जाएं और सेवा में लग जाएं। इसके बाद एक विशेष सूचना है, हमारे यहाँ एक भक्त नितिन प्रभु जो दहीसर में रहते हैं, पिछले 3 दिन से उनका एक भाई 25 वर्ष का है जो लापता हो गया, गुम हो गया है। तो वे चाहते हैं कि सभी भक्तगण भगवान नरसिंह देव से उनकी रक्षा के लिए कीर्तन करेंगे, नरसिंह स्तुति करेंगे। ऐसे यह जो प्रसंग चल रहा है, यह भी नरसिंह का स्तुति ही चल रहा है, तो हम भी उनकी रक्षा के लिए स्तुति करेंगे और उसके बाद सभी प्रसाद के लिए जाएंगे।
बड़े अच्छे भक्त हैं हमारे, रोज मंगलारती कभी आते हैं, आजकल उनको दुख में हैं। तो सभी भक्तों का हमारा प्रार्थना होना चाहिए ताकि उनका दुख दूर हो जाए, ताकि उनका भक्ति भी अच्छे तरीके से हो सके। सब लोग नरसिंह आरती करेंगे। चैंट नरसिंह प्रेयर्स।
नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाद दायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शिलाटङ्कानकालाय, इतो नरसिंहा भारतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, महीर नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंह मदें शरणं प्रपद्ये, तव कर कमल वरे नाका अद्भुत श्रृंगा, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशवद्रिता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवद्रेता नरहरे रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, केशवद्रेता जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
भक्त विघ्नाश नरसिंह भगवान की भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज श्री प्रभुपाद जी आप चंडीगढ़ प्रभु से मिलिएगा मायापुर में जननिवास प्रभु का ठीक है और दूसरा है कि ऐसा कंप्लेन है कि आप सब लोग टाइम पे नहीं आते हैं आप संडे प्रोग्राम को ठीक 8:30 बजे से पहले आ जाना चाहिए वैसे तो 7:15 बजे आना चाहिए दर्शनार्थी के लिए हो सकता है तो मंगल आरती भी आना चाहिए उसके पहले ही आपको कूपन मिलेगा जो कूपन देते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि आके हमसे झगड़ा करते हैं है कि नहीं मंदिर में आपको आना चाहिए सद्भावना से और जो बहुत सारे भक्त है जो नित्य सेवा में भाग नहीं लिए तो उनसे निवेदन है आप नित्य सेवा में भाग लीजिएगा हरे कृष्ण
महाप्रसाद गोविंदे रामो ब्राह्मणे रश्चवे सल्य पुण्योत्तम राजन विश्वासने वजायते शरीर विद्या जाल जरिंदी होता है काल जीवे थे लेव से सागरे तार मती जीवाई थी लोग मारा सुदूर मती ताके जे तक न सारे कृष्ण बड़ो दयामय परिवार जीवा जाए सो प्रसारम दिल भाई संयमित पाओ श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम को चैतन्य निताय जय निमा जय निताय जैसे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत दादर शिवा सादी गौर भक्त अरविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री प्रभुपाद की श्री राधा धारी भगवान की कृष्ण भक्त बिंद की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की निताई गौर हरि प्रेमानंदे। बनवाली दास प्रभु की जय।
Thank you. श्री श्रीराधा कृष्णपादां सगना